شب بخیر. آج رات یہاں ہونا اور اس جگہ کھڑا ہونا شرف کی بات ہے. میں آج صبح سڑک سے آتے ہوئے میں دعا ختم کر کے خداوند کا انتظار کر رہا تھا اور سڑک کی جانب آنے لگا تو میں نے ریڈیو چلایا جس پر ایک خادم بھائی سمتھ جو کہ سیافام بھائی ہیں. کیا آپ سب نے آج صبح انہیں سنا؟ کیا آپ میں سے کسی نے سنا؟ اب میرا خیال ہے کہ وہ اوہایو سے ہیں. کوئی مجھے ان کی منادی کے متعلق بتا رہا تھا اور کہہ رہا تھا آپ کو بھی ان کی طرح کرنا چاہیے. آج صبح میں نے بھی ذرا انہیں سنا اور وہ یقیناً اس بات کے متعلق بتا رہے تھے کہ کیسے گناہ آج دنیا میں کثرت سے پھیلا ہوا ہے, اور وہ یہ بتا رہے تھے. اور میں نے اس سے آگے ایک اور سٹیشن تبدیل کیا اور دوسری جگہ لگایا تو ایک دوسرے کو سنا. اور آج صبح جس وقت میں یہاں آیا, جب میں یہاں اندر داخل ہو رہا تھا تو میں تقریباً وقت دیکھنے کو تیار تھا کہ کہیں میں آج چرچ دیر سے تو نہیں پہنچا. بس آج رات بھی ہمارا یہاں ہونا اور خداوند کی خدمت کو سر انجام دینا در حقیقت بڑے شرف کی بات ہے. میں اور بھائی نیول اس پیغام کے متعلق بات کر رہے تھے جو کسی روز اس خاتون کو سنایا گیا تھا. ہماری بہن جو کہ اب ہم سے رخصت ہو گئی ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کون تھی. وہ ہماری بہن ویور تھی. اور میں یہاں ایک شخص کے بارے میں سوچ رہا ہوں جسے آج رات بپتسمہ دیا جانا ہے. اس اور میں نے اس بہن کو اسی ہاؤس میں بپتسمہ دیا تھا, اور لوگ اس کو یہاں ایک ویل چیئر پر بٹھا کر لائے تھے, اور وہ کینسر کے باعث مر رہی تھی, اور وہ صرف اسی رات کے لیے زندہ تھی اس لیے کہ ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا تھا اور بتایا تھا کہ وہ اگلے روز مر جائے گی. اور میں اس کے گھر گیا اور اسے الہی شفا کے متعلق بتانے کی کوشش کی, اور وہ بس اس بات کو دہرا رہی تھی کہ میں اس لائق نہیں کہ آپ میرے چھت کے نیچے آئیں. اس نے کہا میں اس لائق نہیں ہوں کہ ایک خادم میرے گھر میں آئے. اس نے کہا میں ایک گناہ گار ہوں, لیکن اس نے کہا جناب میں اس طرح سے مرنا نہیں چاہتی ہوں. اور پس گریس ویبر یہاں موجود ہیں جو مجھے وہاں لے کر گئی تھی, اور میں بہت تھک چکا تھا اس لیے کہ میں ابھی عبادات سے آیا ہی تھا. اور جب میں وہاں اس کے لیے دعا کر رہا تھا اور اس کے لیے کلام مقدس کی تلاوت کر رہا تھا تو اسی گھڑی اس نے شفا پائی. تب وہ مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھا پائی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ہر ایک سے ہاتھ ملائے. اس کے ساتھ یقیناً کچھ ہوا تھا. اور جب وہ آپس میں ہاتھ ملا رہے تھے تو میں نے اس کے متعلق ایک رویا دیکھی کہ وہ چوزوں کے دربے کی طرف جا رہی ہے. میں نے کہا سب ٹھیک ہے, یہ ابھی بالکل تندرست ہو جائے گی. اور اس بات کو تقریباً 18 برس ہو چکے ہیں اور وہ کینسر سے رہائی پا گئی. اگرچہ اس کے بعد وہ انتقال کر گئی تھی, لیکن تو بھی کینسر کے باعث اس کی وفات نہیں ہوئی تھی, بلکہ اس کی وفات دل کے دورے کے باعث ہوئی تھی. انہوں نے اسے آکسیجن لگا رکھا تھا. وہ دل کے دورے کی وجہ سے انتقال کر گئی. اور پھر میں سوچ رہا تھا کہ آخر میں جب لوگ باہر جا رہے تھے تو وہ گیت گا رہے تھے, پھر یسوع آیا. یہ بالکل سچ ہے کہ وہ آیا تھا اور اسے 18 برس مزید زندگی بخش دی تھی. اور میں نے سوچا کیسی مناسب بات ہے, شاید وہ عورت جانتی بھی نہ تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا, اور ایک بار پھر وہ ٹھیک ہو سکتی تھی. لیکن یہ کتنی اعلیٰ بات تھی کہ پھر یسوع وہاں آ گیا اور وہ اس کا حصہ بن گئی. اب یہ تھوڑا سا پہلے ہے, لیکن میں پر امید ہوں کہ میں نے عبادات کے لیے بڑی ترتیب بنا رکھی ہے. میں واقعی پریشان ہو جاتا ہوں. آج صبح میں بڑا ہی پریشان ہو گیا تھا اور میں دعا کے لیے اوپر چلا گیا, اور پھر میں واپس گھر آیا, گھر والوں کو لیا اور انہیں ایریزونا لے گیا, اور میں تاکہ بچے سکول جا پائیں, اور پھر میں یہاں واپس آیا ہوں تاکہ تھوڑا سا آرام کر سکوں اور بائی وڈ اور بھائیوں کے ایک گروہ کے ساتھ شکار کے لیے جا سکوں. اور آنے والے ہفتے میں ہم شکار کے لیے باہر جائیں گے, اور ہم کینٹکی کے علاقے میں جائیں گے. اور میں ذرا اس دن آ موجود ہوا جس دوران مسز ویور انتقال کر گئی تھی, اور میرا یہاں ہونا مناسب تھا, اور اس کی تدفین میں بھائی نیول کی مدد کی. اور میں یہ کوشش نہیں کر رہا کہ اب اس کے متعلق اور کچھ کہوں. آپ جانتے ہیں کہ لوگ شکایتیں کرتے ہیں, اس لیے میں سوچتا ہوں کہ خوفناک ترین باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک مرد یا ایک عورت جو مسلسل شکایات کرتے رہتے ہیں. میں نے ہمیشہ اس پر غور کیا ہے. اے خدا مجھے اس سے بچائے رکھنا. غور کریں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات ہمیشہ ایمان کو کمزور کرتی ہے. آپ صرف اگر آپ مجھے معلوم ہے, جیسے ہی ہم جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ کچھ پیش ہونے والا ہوتا ہے اور کچھ ہو جاتا ہے. اور میں جانتا ہوں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو واقعہ ہو رہی ہوتی ہیں ان کا انبار لگ جاتا ہے, اور جیسے ہی آپ بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ سب آپ کو گر لیتی ہیں. میں سب سے خطرناک باتوں میں سے ایک کے متعلق سوچتا ہوں, وہ یہ ہے کہ شیطان کسی شخص کی زندگی کو تاجدار کر دے. آپ ایک بد مزاج بوڑھے آدمی या एक बूढ़ी औरत पर गौर करें। मुझे उम्मीद है कि मैं उस मकाम को हासिल नहीं करना चाहता। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने बोझ को बर्दाश्त कर सकता हूं और इस मकाम पर पहुंच सकता हूं, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी खुदा के जलाल से और उसकी बर्दाश्त, हलीमी, इत्मीनान, नरम मजाजी और रुल्क से भरपूर ताजदार होनी चाहिए। और मैं, जैसा कि मेरी एक खास कमजोरी है जो मुझे हमेशा जिंदगी भर दुख पहुंचाती रहती है, और वो मेरी असाबी हालत है। जब मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूं, तब मैं वाकई ही बहुत परेशान हो जाता हूं। मैं सोचने लगता हूं और इस तरह महसूस होता है कि कोई आपकी फिक्र नहीं करता, आप जानते हैं, और आप तमाम के साथ भी ऐसा ही होता है, और मेरे लिए इसकी मकदार वाकई ज्यादा होती है, और आप जानते हैं, और बाज़ औक़ात ये एहसास ज्यादा बढ़ जाता है और बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, और ये परेशानी है जो कि ऐसा करती है। और फिर मैं कई बार ऐसे मकाम पर पहुंच जाता हूं, खास तौर पर उन बेशुमार रोयाओं के साथ। आप गौर करें, ये मुझे घेर लेती हैं। मैं एक शख्स पर निगाह करता हूं, तो मैं सोचता हूं कि ये एक रोया नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जी हाँ, क्या ये रोया नहीं है? क्या आप समझे? और आप जान नहीं पाते कि इसके साथ क्या कीमत देनी पड़ती है। बस फिर आप हैरान होते हैं, फिर आप सोचने लग जाते हैं, अच्छा आप हैं, फिर आप अपने ख्याल से हट जाते हैं और कहते हैं, अच्छा अब मैंने क्या कर दिया है? मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरी उम्र 50 बरस की है और मैं खुदावंद के लिए कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, और क्या हो रहा है, ओ मेरे खुदाया। फिर आपको वो बीमारी लग जाती है जिसे हम ज़हनी परेशानी कहते हैं। आप में से कुछ मेरी उम्र के भाइयों को याद है कि वो इसे क्या कहा करते थे, ज़हनी परेशानी। अब्बा जान अक्सर मुझसे इसी तरह बात किया करते थे, और मैं हैरान हो जाता था कि इसका क्या मतलब है, और अब मैं यकीनन जानता हूँ कि इसका क्या मतलब है। बस फिर आप इस तरीके से महसूस करने लग जाते हैं, हर कोई जानता है, ये सच है, ये फक्त आप हैं, और आप इस बात से वाकिफ हैं। देखें, आप इसे जानते हैं, ये सिर्फ आप हैं जो महसूस कर रहे हैं। बस मैं कोशिश कर रहा था कि अब थोड़ी देर के लिए खुद को खामोश कर लूं और उस बड़े झटके के लिए तैयार हो जाऊं, जिसकी मुझे उम्मीद है कि जल्द आ रहा है। और फिर जैसा कि मुझे ठीक यहाँ से दूर न्यूयॉर्क जाना है, और मुझे इस मुहिम में एक इबादत को लेना है, और फिर वहाँ से शेरपोर्ट जाना है, और फिर दोबारा फिनिक्स जाना है, फिर मुझे मगरिब के चौगिर्द बल्कि अमेरिका के शुमाली बॉर्डर की तरफ आना है। और फिर अब जैसा कि वो समुन्दर पार जाने के लिए इंतजाम कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, जिसे हम साल की पहली समाई के बाद शुरू कर सकते हैं, मार्च, अप्रैल या शायद कुछ इसी तरह के दिनों में। और अगर हम इससे अगला दौरा कर सके तो हम उसका आगाज स्टॉकहोल्म या ओस्लो से करेंगे और पूरी दुनिया के चौगिर्द जाएंगे। अब मैं थोड़े से आराम के लिए घर में हूँ, ताकि अपने आप को बहाल कर पाऊँ और ताज़ा दम हो सकूँ। और अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो मैं अगले इतवार को केंटकी से वापिस आ जाऊँगा। और अगर ये सब ठीक हुआ और खुदावंद की मेहरबानी से, और भाई नेवल ने अगर बुरा ना माना तो ठीक, फिर मैं अगले इतवार को अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो इबादत लेने की कोशिश करूँगा, और जैसे कि उसकी मर्जी और भाई नेवल की मर्जी भी हुई तो मैं यहाँ हूँगा। जी हाँ जनाब, जैसा कि वो अगरचे उसके मुतल्लिक इसकी मर्जी हुई जैसे कि भाई नेवल की मर्जी है, मुझे उम्मीद है कि उसकी मर्जी है। अब देखें, अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो फिर मैं जानता हूँ कि मैं बहुत जल्द आपसे थोड़े अरसे के लिए दूर जा रहा हूँ, और मैं इन मुख्तसर पैगामात को, जिन्हें मैं हर तरह से अपने दिल में रखता हूँ, और फिर मैं महसूस करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इन्हें आपके सामने पेश करूँ। और आप देखते हैं कि हम इन्हीं के गिर्द लिपटे रहते हैं, और अब मैंने इनमें से चंद एक को लिया है, यानी 5 या 6 जो मुझे पिछले दिनों में मिले थे। और मैं 2 दिन के लिए गिलहरियों के शिकार पर बाहर गया हुआ था, और जब मैं जंगल में जाता हूँ तो मैं एक पेंसिल और कागज ले लेता हूँ, समझे। अभी तकरीबन वक्त अच्छा और उजाला ही था, और मैं किसी जगह एक दरख्त के साथ टेक लगाए हुए था, और मैं अभी तक सोया नहीं था। और फिर मैंने दुआ करना शुरू कर दी कि खुदावंद मुझे कुछ दे ही देगा, आप समझे। फिर मैंने इसके मुतल्लिक मुख्तसर नोट लिखना शुरू कर दिया। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है, जब आप इस तरह करते हैं तो फिर जब मैं यहाँ आता हूँ तो फिर मैं इन तमाम को एक कागज पर लिख लेता हूँ, और फिर जब मुझे बुलाया जाता है तो आप देखते हैं, फिर जब मैं बाहर जाता हूँ तो अपने इस कागज को ले लेता हूँ, और फिर इस पर गौर करता हूँ और देखता हूँ कि मैं क्या शुरू करूँ। और अब भी वैसा ही है, बस अब अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा हो कि उन बड़े और तवील पैगामात को मुख्तसर करूँ आप समझ गए, क्योंकि ये आपके घंटे ले लेते हैं। और खुदावन ने शिकागो में गुज़िश्ता रात मेरी इस छोटी सी खूबसूरत जिम्मेदारी को निभाने में मदद की, और ये तकरीबन 30 मिनटों पर मुश्तमिल था। और कोई शख्स नजदीक आया और उसने कहा, मैं नहीं समझता था कि आप में ये बात है, लेकिन आपने ऐसा कर दिखाया। और आप जानते हैं, कहाँ 2, 2.5 या 3 घंटे और कहाँ सिर्फ 30 मिनट। और हो सकता है कि आज रात भी मैं जल्दी ही करूँ और मुख्तसर सी मशक करूँ, ताकि आपको ज्यादा देर तक ना बिठाऊं। खुदा आपको बरकत दे। कोई मसला नहीं, मैं चाहे कहीं भी जाऊं, लेकिन इस टैबरनेकल की मानित कोई जगह नहीं है। ये घर प्यारा घर है, और मैं वीवर खानदान के साथ इस गम की घड़ी में शरीक हूं, और मैं इस बेशकीमत सियाफाम भाई के साथ, जो के रहलत कर चुके हैं। इससे पहले के वो कूच करता, मैंने उसके साथ दुआ की थी, और वो एक बेहतरीन किरदार का मालिक था, और अब वो खुदा के घर में है। बस यही सब कुछ है। और किसी भी तरह आपको भी जाना है, और हम सब इस बात से आगाह हैं। बस हम जानते हैं, खुदावंद उनकी रूहों को सुकून में रखे, और हम उम्मीद करते हैं कि किसी रोज उस पार वाली सरजमीन में शामिल होंगे, जहां बीमारियां, दुख, दर्द या मौत ना होगी। तब तक आएं, हर वो काम करें जो हम अंजील के लिए कर सकते हैं। जब परेशानी के मुतल्लिक बात हो रही है, तो आज सुबह मैं इसी के मुतल्लिक दुआ कर रहा था। आप क्या करेंगे अगर आपको कोई परेशानी ना हो? जरा इसके मुतल्लिक सोचें। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है। जब मैं इसके मुतल्लिक सोचता हूँ, तो ये एक किस्म से मेरी हौसला अफजाई करती है। अगर आपको कोई परेशानी नहीं होती, तो आप एक कपड़े की गुड़िया की मानिंद हो जाएंगे। फिर आप कुछ भी महसूस नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिस पर आप काम कर पाएं। जैसे एक शोहर और बीवी हो सकते हैं, और शायद बीवी चाहती हो कि कोई काम करे, और खास तौर पर मसीह होते हुए जब वो मिलकर कोई काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद शोर कुछ और चाहता हो। लेकिन फिर भी जब आप मिलकर कोई काम करते हैं, तो आप देखते हैं कि उसने क्या किया है, और वो देखती है कि आपने क्या किया है। गौर करें कि परेशानी हकीकत में आपको इकट्ठा करके करीब ले आती है, और कोई आपको बताता है कि ठीक है, और कहता है, जरा उस बीवी के मुतालिक सोचें कि जब आप तंदुरुस्त नहीं होते, तो वो बेशुमार परेशानियों के चुंगल में फंस जाती है। या अगर बीवी तंदुरुस्त ना हो, तो शोहर कुछ परेशानियों के चुंगल में फंस जाता है। फिर जब सब कुछ टल जाता है, तो फिर गौर करें कि आप उसके लिए कैसा महसूस करते हैं। मेरे खुदाया, आप सिर्फ गौर करें, आपको परेशानी होनी चाहिए, ठीक है? और जरा एहसास के मुतालिक सोचें, क्या हो अगर आप में कोई एहसास नाम जैसी चीज ना हो, और ना ही दर्द हो, या ना ही कुछ और हो? क्या हो अगर दर्द बिल्कुल ना हो? तो फिर आप में एहसास नाम की कोई चीज नहीं होगी, समझे? और अगर आप में एहसास नहीं है, तो फिर आपकी हिस्सों में से एक हिस्स खत्म हो चुकी है, समझे? बस गौर करें, किसी भी तरह से हर एक चीज ठीक ही है। बस खुदा ने हमें इस पर गलबा पाने के लिए फजल अता किया है। बस यही बात है। अगर हम सिर्फ उसके फजल के साथ कायम रहते हैं, और खड़े रहते हैं, और कहते हैं, हम जानते हैं कि जब ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो दूसरी तरफ जहां हम जाने के मुंतजिर हैं, वहां वो अजीम हस्ती मौजूद है। और अब हम इन बातों को याद रखते हैं। ये भी परेशानी है, जैसा कि कुछ लोग मसीहत का तारुफ कराने की कोशिश करते हैं कि आप परेशानी से आजाद हैं। क्या आप नहीं जानते हैं? नहीं, आप आजाद नहीं हैं। कहते हैं आप परेशानी से आजाद हैं। ओ नहीं, बल्कि जब आप एक मसीही बनते हैं, तो आपकी परेशानी में इजाफा हो जाता है, क्योंकि पहले आप एक घूमने फिरने वाले, खुशी से किस्मत पर इंसार करने वाले थे, या उस वक़्त जो कुछ भी करते थे उसकी फिक्र में नहीं रहते थे कि आपने क्या किया है। लेकिन जब आप एक हकीकी मसीही बन जाते हैं, तो फिर हर एक लम्हा आपके लिए हैरान कुन होता है। क्या मैं अपने खुदावंद को खुश कर रहा हूँ? क्या मैं उसकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ? ये बातें आपको परेशान करती हैं और दफा करने पर लग जाती हैं। यही वो चीज़ है जो आपको वो बनाती है जो कि आप हैं। बस इस सब के बावजूद परेशानी भी एक बाप बरकत चीज है। सिर्फ यही रास्ता है जिससे आप उस पर निगाह डालते हैं। सिर्फ यही रास्ता है जिससे आप उस पर निगाहें लगाते हैं। देखें, बस अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं, तो वहाँ कोई मसला नहीं। चाहे आप किसी भी चीज के कितनी बारीकी से टुकड़े करते हैं, फिर भी आप उसकी दोनों अतराफ को देखते हैं। आप समझ गए? क्योंकि फिर आपको दोनों तरफ देखना पड़ता है। बस परेशानी, मैं सोचता हूँ, ओ मेरे खुदाया, ये परेशानी क्या है? अगर मैंने इस परेशानी के बगैर जन्म लिया होता, खैर, अगर मुझे ये परेशानी ना मिली होती, तो मैं ऐसा ना होता जैसा मैं हूँ, और शायद फिर मैं एक मसीही भी ना होता। इसलिए ये परेशानी मुझे यीशु के पास ले आई, समझे? इसलिए ये मेरे लिए एक बाप बरकत बात है। बस तब जैसे पालूस ने कहा, जब उसे एक परेशानी या इसी तरह की कोई दूसरी परेशानी थी, तो उसने 3 मर्तबा खुदावंद से चाहा कि उसे उससे दूर कर दे, और खुदावंद ने कहा, साउल मेरा बल्कि पालूस मेरा फजल ही काफी है। उसने कहा, तो फिर मैं अपनी कमजोरियों में ही जलाल पाऊंगा, इसलिए फिर जब मैं कमजोर होता हूँ तो तभी मैं मजबूत होता हूँ, समझे। जब तक ये खुदा की मर्जी है ये ठीक है। अब एक मर्तबा मैंने उससे इल्तिजा की जब उसने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया था, उसने मुझे खौफ ज़दा कर दिया था, और तकरीबन 8 या 10 बरस हुए कि उसने मुझे बताया, उसने कहा कि अब ये दोबारा तुझे कभी खौफ ज़दा नहीं करेगी, और उसने ऐसा फिर कभी नहीं किया। नहीं जनाब, इसके मुतल्लिक फिक्रमंद ना हूँ, मैं अब भी उसे महसूस करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि वो यहाँ मौजूद है, और मैं बस इतनी बात पर रवा दवा हूँ कि उसने फिर मुझे कभी खौफ ज़दा नहीं किया। बस इस बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अब वो कह चुका है कि ऐसा मजीद नहीं होगा, तुम फक्त इसके साथ साथ मजीद खौफ ज़दा नहीं रहोगे। बस ये उसकी मर्जी है कैसा होता है, इसलिए मैंने सिर्फ उसे कबूल किया और कहा, खुदावंद तेरा शुक्रिया, मैं इसी तरीके से चलूंगा। अब आए हम जरा एक लम्हे के लिए अपने सरों को दुआ के लिए झुकाएं। क्या यहाँ कोई दुआ के लिए खास दरखास्त है? मैंने देखा है यहाँ रुमाल पड़े हुए हैं, तो अपना हाथ बुलंद करें। खुदावंद अपने बच्चों में से हर एक को बरकत दे। हमारे आसमानी बाप, अब हम तेरे अजीम हशमत वाले फजल के तख्त के करीब आते हैं, क्योंकि हमें यहाँ आने के लिए कहा गया है। हम यहाँ यीशु मसीह के हुक्म पर आ रहे हैं, और हम अपनी सारी फिक्रें लेकर आ रहे हैं, और इन्हें खुदा के हजूर रखते हैं, क्योंकि वो हमारी फिक्र करता है। ये जानना ही कितनी बड़ी तसल्ली है कि वो हमारी फिक्र करता है। आसमान का अजीम खुदा जो तख्लीक करने वाला है, वो हमारी यानी अपनी तख्लीक की फिक्र करता है। खुदावंद, हम इस बात के लिए बहुत खुश हैं। ये कैसी तसल्ली है जो तू हमें इस वक्त जिसमें हम रह रहे हैं दे रहा है, और ये तसल्ली कहीं और से नहीं बल्कि तेरे कलाम से मिलती है, और ये तेरा वादा है जो हमें तसल्ली देता है। और अपने वादे में तूने कहा है कि तू हमारी इल्तिजाओं को सुनता है, और तूने कहा अगर तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं वैसा ही करूँगा। और ये तमाम अजीम वादे हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और शक ना करो, तो वो उखड़ जाएगा। और इन तमाम वादों को हम अपने ऊपर लागू करते हैं। बस जो कुछ भी हमें चाहिए, खुदावंद हाथ उठ चुके हैं, और ये लोग जरूरतमंद हैं। तू ही इनकी जरूरतों को जानता है। ऐ बाप, इन्हें अता कर। मैं अपनी दरखास्त इनके साथ तेरे सामने रखता हूँ। देख, इनके साथ मेरे भी हाथ उठे हुए हैं। यहाँ इस मेज पर रुमाल पड़े हुए हैं। ओ खुदावंद, लोगों का कैसा दलेराना ईमान है। ऐसा लगता है जैसे कुछ है जिससे तूने मुझे बरकत बख्श दी है, ताकि इस काबिल हो जाऊं कि बीमारों के लिए दुआ कर सकूं। जहां भी, किसी भी जगह, जहां कहीं मैं जाऊं, ये कुछ है जो बीमारों के लिए दुआ करने के लिए है। अब ऐ खुदा मेरी मदद कर। मैं दयानतदारी के साथ दुआ करता हूं कि जो दरख्वास्तें लोगों ने इन रुमालों की सूरत में जो यहाँ पड़े हुए हैं की हैं, मंजूर फरमा। अपने रहम को इन पर होने दे। खुदावंत, हम समझते हैं, जैसा कि बहन हिक्स यहाँ एक औरत को लाई है जो कि कैंसर के साथ तमाम रास्ते से गुजरती हुई यहाँ दुआ के लिए आई है, और वो चाहती थी कि बहन उसे यहाँ लाए, तो वो उसे यहाँ ले आई है। ऐ खुदा, मैं दुआ करता हूँ कि तू इस बहन को जिंदगी बख्श दे और इसे मंजूर कर। और जैसे ही मैं दरवाजे से निकला तो मेरा छोटा भतीजा माइक बहुत ज्यादा बुखार की वजह से घर में बीमार पड़ा हुआ था और उल्टियाँ कर रहा था। खुदावंत, मैं ईमान रखता हूँ कि हमारे ईमान से की गई दुआ के बाइस तू उसे ठीक कर देगा, और मैं इस बात के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। और महसूस करता हूँ कि इससे पहले कि मैं इस जगह को छोड़ूं, बुखार लड़के को छोड़ चुका होगा। अब ऐ खुदावंद, इन तमाम बातों के लिए तेरा शुक्रिया। अब ये सब मेरे लिए मुकरर है कि तेरे कलाम का प्रचार करूँ। खुदावंद, हमें अपना कलाम अता फरमा, क्योंकि तेरा कलाम सच्चाई है। हमारी रूहों को बरकत दे और हमें फजल अता कर जिसकी हमें जरूरत है, ताकि आज रात खुदा के कलाम में से तेरे वादों को हासिल कर सके। इस पूरे हफ्ते में हमें संभालना और ये बख्श दे। हमारे पास्टर इस बहादुर रूह को और इसकी बीवी को और इसके बच्चों को, डीकनों को, खजानचियों को, और हर एक शख्स को जो इस इमारत के अंदर या बाहर मौजूद है, बरकत दे। ऐ बाप, इसे मंजूर कर। हम इन बरकत को यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। अब मैं खुदावंद के तहरीर करदा कलाम में से 2 मकामात से पढ़ना चाहता हूँ। पहले मैं जबूर की किताब जबूर 86 में से पढ़ना चाहता हूँ, और फिर मैं मुकद्दस मत्ती की अंजील 16वें बाब में से पहली ता तीन ए तक पढ़ना चाहता हूँ, और मैं इस जबूर का ये हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ, ना के पूरे को बल्कि तकरीबन 11वीं ए तक, जो कि इसके आधे हिस्से से थोड़ा सा ज्यादा है। इससे पहले कि इस पर मुनादी करूँ, मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि अगर मैं इसे एक मजमून का नाम देता हूँ तो ये है मुत्तहिद होने का वक्त और निशान। मुत्तहिद होने के वक्त का निशान, ये आवाज पोचीदा है, मुत्तहिद होना समझे, और वक्त मुत्तहिद होने का वक्त जो कि अब ही है, और ये मुत्तहिद होने के वक्त का निशान है। जबूर से मैं जबूर 86 से पढ़ता हूँ, जो कि दाऊद की एक दुआ है। ऐ खुदावंद, अपना कान झुका और मुझे जवाब दे, क्योंकि मैं मस्कीन और मोहताज हूँ। मेरी जान की हिफाजत कर, क्योंकि मैं दीनदार हूँ। ऐ मेरे खुदा, अपने बंदा को जिसका तवक्कल तुझ पर है बचा ले। या रब, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं दिन भर तुझसे फरियाद करता हूँ। या रब, अपने बंदा की जान को शाद कर दे, क्योंकि मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूँ। इसलिए कि तू या रब नेक और माफ करने को तैयार है, और अपने सब दुआ करने वालों पर शफकत में गनी है। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ पर कान लगा और मेरी मिन्नत की आवाज पर तवज्जो फरमा। मैं अपनी मुसीबत के दिन तुझसे दुआ करूंगा, क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। हो, क्या ये खूबसूरत बात नहीं है, तू मुझे जवाब देगा। या रब, माबूदों में तुझसा कोई नहीं और तेरी संते बेमिसाल हैं। या रब, सबको में जिनको तूने बनाया आकर तेरे हजूर सजदा करेंगी और तेरे ही नाम की तमजीद करेंगी, क्योंकि तू बुजुर्ग है और अजीबो गरीब काम करता है, तू ही वाहिद खुदा है। अब सुनिए, ऐ खुदावंद, मुझको अपनी राह की तालीम दे, मैं तेरी रास्ती में चलूंगा। मेरे दिल को यकसुई बख्श दे, ताकि तेरे नाम का खौफ मानूं। हम हांगी समझे, मेरे दिल को यकसुई बख्श दे, ताकि तेरे नाम का खौफ मानूं। अब मैं यकसुई और वक्त के निशान के मुतल्लिक बात कर रहा हूं। अब मुकद्दस मत्ती के 16वें बाप में से देखते हैं। फिर फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर अजमाने के लिए उससे दरखास्त की कि हमें कोई आसमानी निशान दिखा। उसने जवाब में उनसे कहा, शाम को तुम कहते हो कि खुला रहेगा, क्योंकि आसमान लाल है, और सुबह को ये कि आज आंधी चलेगी, क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है। ऐ रयाकारो, तुम आसमान की सूरत में तो तमीज करना जानते हो, मगर जमानों की अलामतों में तमीज नहीं कर सकते। खुदावंद, इस कलाम के पढ़े जाने पर अपनी बेमिसाल बरकात नाजिल फरमा। अब हम इस मुत्तहिद होने के मुतल्लिक, यानी मुत्तहिद होने का वक्त और मुत्तहिद होने के वक्त के निशान के मुतल्लिक बात कर रहे हैं। गौर करें, इस आखिरी हवाले में जो पढ़ा गया है, यीशु यहाँ मौजूद था और वो मजहबी लोगों को मलामत कर रहा था, क्योंकि वो वक्त या वक्त के निशान के बारे में तमीज करने के काबिल नहीं थे। अब ये हमेशा ही लोगों के नजदीक एक अजीम बात रही है। गौर करें कि जिस जमाने में आप रह रहे हैं, उस वक्त के निशान के बारे में आप तमीज करने के काबिल हों, क्योंकि खुदावन ने वाजे तौर पर इसे तहरीर कर दिया है, ताकि कोई भी इससे बच ना पाए। अब मैं अमूमन पीछे जाता हूँ और दूसरे खादमों यानी खुदावंत के बंदों की बातों को, जो बाइबल के वक्त में थे, लेता हूँ, जैसे नूह के जमाने का निशान और दानियल के जमाने का निशान और मजीद ऐसे मुख्तलिफ निशानात। लेकिन आज रात मैं वक्त को बचाने की खातर इन्हें छोड़ना चाहता हूँ, ताकि वक्त बचाने के काबिल हो सके। लेकिन खुदा का हमेशा यही तरीका रहा है कि वो लोगों को वक्त के मुतल्लक फितरत का एक निशान देता है, ताकि हर कोई जान पाए कि ये कौन सा वक्त है। और उन फरीसियों को अपने वक्त को जानना चाहिए था, उन्हें जानना चाहिए था कि वो कौन से वक्त में थे। एक हवाले में उसने उनसे कहा, अगर तुमने मुझे जाना होता तो तुम मेरे दिन को भी जानते, समझे। ये एक बहुत ही अजीम बात है जिसे हम समझते हैं। गौर करें, बिना समझे क्या हुआ। यही बात है जिसके मुतल्लिक वो हमेशा नबियों के हवाले देते थे और कहते थे क्योंकि उनके पास खुदावंद की रोयाओं के जरिए समझ मौजूद थी और खुदावंद का कलाम पुराने वक्तों में नबियों पर नाजिल हुआ करता था। इसलिए देखें, उन्हें खुदावंद के कलाम की समझ नबियों के जरिए मिली थी और तब अंबिया हमेशा एक निशान देते थे, जैसे कि एक नबी अपने एक पहलू पर काफी अरसे तक लेटा रहा और फिर वो मुड़ा और अपने दूसरे पहलू पर लेटा रहा, जैसे एक शख्स ने अपने कपड़े ही उतार दिए और ओ जैसा कि उन्होंने बहुत सारे काम किए ताकि उस जमाने के निशान को जाहिर करें जिसमें वो रह रहे थे। और अब हम जानते हैं कि वो खुदा जिसने आसमानों और जमीन को बनाया और ऐसे ही उसने अपने काम किए, उसने निशान के जरिए अपने वक्त को जाहिर किया, वही यकसा खुदा आज भी जिंदा है। इसलिए हमें भी कुछ मालूम होना चाहिए और हम इस वक्त को देखते हैं जिसमें हम रह रहे हैं। इसलिए यहाँ अहम बात है जिसे कहीं कोई जुटला रहा है, समझे? क्योंकि खुदा कभी भी हमें एक वाज़े निशान दिए बगैर इन बातों को वाके नहीं होने देता ताकि किसी तरह हम इनको समझ जाएं। अब आज भी यहाँ यही बात है कि मजहबी लोग कहते हैं, क्या हम इसे दुरुस्त नहीं पढ़ते? ये बिल्कुल ऐसा है जैसा उस वक़्त था। वो तब नहीं सोचते थे कि यही वक्त था। उन्होंने सोचा कि वो बड़े पुरसकून तरीके से रह रहे हैं, इसलिए वो मसीह की आमद के मुंतजर ही नहीं थे। और यीशु ने कहा उसकी आमद ऐसे होगी जैसे रात को चोर आता है और लोग उसकी आमद से बेखबर होंगे। लेकिन वहाँ कुछ कंवारियाँ थीं और उनमें से आधी जिनकी मछलों में तेल था और जो तैयार थी वो उससे मिलने गईं क्योंकि वो उस निशान की मुंतजिर थीं। और यही वो बात है जिसके मुतल्लिक आज रात मैं बात कर रहा हूँ। तवज्जो करें, जो उसकी आमद के निशान के लिए मुंतजिर हैं। ये निशान खुदावंद के जरिए सिर्फ ईमानदारों को ही दिए जाते हैं क्योंकि बे ईमान इन्हें कभी देख नहीं पाते हैं। वो ठीक बरमला उनके सामने हो रहे होते हैं और फिर भी वो इन्हें देख नहीं पाते हैं। और अब यकीनन बिल्कुल आज रात खुदा का फरिश्ता इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और ये इतना ही सच है जितना कि मैं आपको देख सकता हूँ और इसी तरह मैं उसे भी देख रहा हूँ, या फिर आप उसे देख सकते हैं और मैं उसे नहीं देख सकता, या मैं उसे देख सकता हूँ और आप उसे नहीं देख सकते। और अब आप इस हवाले से वाकिफ हैं और ये बिल्कुल सच है। उसने देखा और आप इस बात को जानते हैं कि पालूस गिर पड़ा, लेकिन उनमें से कोई भी उस नूर को न देख सका। वही नूर बिल्कुल वहाँ मौजूद था जब यूहन्ना उस भीड़ के सामने खड़ा था और लोग हजारों की तादाद में जो मजहबी और अकलमंद और बड़े बड़े आदमी थे किनारे पर मौजूद थे। और यूहन्ना ने खुद ये गवाही दी कि मैंने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद आसमान से उतरते और उस पर ठहरते देखा और एक आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और सिवाय यूहन्ना के किसी ने भी उसे ना देखा, समझे? इसलिए कि ये सिर्फ उसी के लिए था। क्या आपने गौर किया कि उन मजूसियों के लिए वो कैसा वाज़े निशान था? उन्होंने वहाँ उसे देखा। वो अबरानी थे, वो वाकई इंडियन माहिर फलकियात ना थे बल्कि वो अबरानी थे क्योंकि उस मुल्क में थे जहाँ उन्होंने फलकियात के मुतालिक मुतालिया करके अपनी तालीम को मुकम्मल किया था। और जब वो वहाँ थे तो उन्होंने यरूशलम की तरफ निगाह दौड़ाई और ये जानते हुए उन्होंने उन तीन सितारों को देखा जो उनमें से हर एक सिम, हाम और याफ्त की पदेश का मजर थे जिनकी नस्ल में से वो और हर कोई आया था। और वो उन सितारों को उनकी पदेश के मजर के तौर पर देख चुके थे और ये उनके लिए एक निशान था कि जब वो सितारे तरतीब में आएंगे तो मसीहा की आमद जमीन पर होगी। ओ मेरे खुदाया, फिर कोई हैरत नहीं कि वो आए और कहा, वो कहाँ है? यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका सितारा देखा है और उसे सजदा करने के लिए आए हैं, वो कहाँ है? वो इस बात से वाकिफ थे कि जमीन पर कहीं नौमलूद मसीहा ने जन्म लिया है क्योंकि खुदा ने उन्हें उस वक्त का निशान दे दिया था क्योंकि खुदा और इंसान आपस में मुतहिद हो रहे थे। कैसी अजीम यकसुई थी जब खुदा ने खुद को एक इंसानी बदन में डाल लिया। कैसा कानून है जिसने ये अजीम यकसुई का काम सरंजाम दिया और खुदा ने इंसान के साथ मिलाप कर लिया और उसने अपनी अजीम जात यानी खुदा होने की हैसियत को छोड़ दिया और अपने खेमे को आगे बढ़ाया और इंसानियत इख्तियार कर ली और हम में से एक बन गया ताकि हमें निजात दे। ये यकसुई है। ये क्या है? ये वो है जिसने खुदा और इंसान के दरमियान हमेशा के लिए सुलह करा दी। हमें कितना ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। क्या और निशान नहीं दिए गए थे? अब जरा हर एक इंसान اور تمام ماہر فلکیات ان کے متعلق سوچیں۔ ان دنوں میں ان لوگوں کی گھڑیاں ستارے ہوتے تھے، اس لیے تو ایک نگہبان بلند و بالا مینار کے اوپر چڑھ جاتا تھا اور وہ وہاں اوپر چڑھ کر دیکھتے تھے، اور جب وہ فلاں فلاں ستاروں کو ایک خاص جرمٹ کی شکل میں دیکھتے تھے اور جیسے ہی وہ گزر جاتے تھے تو وہ جان جاتے تھے کہ یہ کون سا وقت ہے۔ کلام مقدس کو یاد رکھیں، نگہبان یہ کون سا وقت ہے، اور نگہبان آتا تھا اور اسے بتاتا تھا کہ یہ کون سا وقت ہے۔ غور کریں، وہ لوگ ستاروں کے ذریعے وقت کو دیکھتے تھے۔ اب کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ وہ ستارے ان تین آدمیوں کے لیے بالکل ترتیب میں تھے اور ان کے علاوہ انہیں کسی نے نہ دیکھا، سمجھے؟ بس وہ بالکل ترتیب میں تھے۔ اب آپ بھی کلام مقدس کی ترتیب کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھے؟ جب ان ستاروں نے اتحاد کر لیا اور اپنے آپ کو اس جرمٹ میں اکٹھا متحد کر لیا تو اسی وقت تین انسانوں نے بھی اتحاد کر لیا۔ آپ بھی خدا اور اس کے کلام کے ساتھ متحد ہو جائیں تاکہ یہ باتیں حقیقت بن جائیں اور پھر آپ انہیں دیکھ سکیں اور جان سکیں کہ یہ سچ ہے، سمجھے؟ یہ وقت کا نشان ہے۔ شاید لوگ اسے دیکھیں اور کہیں یہ کیا حماقت ہے، لیکن آپ کے لیے یہ حماقت نہیں ہے۔ آپ جو خدا کے کلام کے ساتھ متحد ہیں، آپ کے لیے یہی سب کچھ ہے۔ بھائی پیٹ، جب آپ اس نشان کو ایمانداروں کے ساتھ جڑا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر یہ مطلق طور پر نور ہے، اور یہی وہ ہے جس سے میں مخاطب ہو رہا ہوں، اور وہ ایماندار ہے کیونکہ بے ایمان اسے کبھی نہیں دیکھ پاتا۔ اور اگر وہ آج زمین پر موجود ہوتا تو وہ کس طرح سے آج ہمارے مذہبی لوگوں کو ملامت کرتا جو ان نشانوں کو نہیں پڑھ سکتے؟ وہ نشان جو کہ ہم ہر روز ٹیبرنیکل میں پڑھتے ہیں اور ان باتوں پر غور کرتے ہیں، اور جبکہ دوسرے اسے پڑھتے ہیں اور نوشتہ دیوار سمجھتے ہیں اور پھر اسے پورے طور پر سمجھ نہیں پاتے ہیں اور اکثر اسے رد کر دیتے ہیں، یہ ان سب کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور وہ اس پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ اب اس بات پر ذرا دھیان دیں کہ اس نے قومی نشانوں کی نشاندہی کی۔ اب جب انہوں نے اس کے متعلق اس سے پوچھا تو انہوں نے نشان طلب کیے اور اس نے انہیں نشان دیے جو وقوع ہوئے، اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ کب دنیا کا اختتام ہوگا اور آخرت کا نشان کیا ہوگا، اور اس نے انہیں کلام میں سے بہت سے مقامات پر قومی نشانوں کی نشاندہی کر کے دکھایا، آسمان پر آسمانی نشان کے متعلق اور زمین پر زمینی نشان کے متعلق واضح کیا۔ اس نے انہیں نشانات دیے اور متواتر نشان دیتا رہا، اور جب اس نے انہیں ایک مقام پر قومی نشان کے متعلق بتایا تو اس نے کہا، غور کرو، جب تم قوموں کو یروشلم کے گرد اکٹھا ہوتے دیکھو تو غور کرو، یعنی جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھیرا ہوا دیکھو تو پھر ہم جانتے ہیں کہ ان کی مصیبت کی گھڑی قریب ہے۔ اب اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرتے، خدا بلکہ دنیا متحد ہو گئی۔ تیتس عظیم رومی جنرل نے اپنی فوجوں کو اکٹھا کیا اور پھر یروشلم کو گھیر لیا، کیونکہ ان یہودیوں نے خدا کے دیے گئے وقت کے نشان کو جو انہیں دیا گیا تھا رد کر دیا تھا، اور وہی وقت تھا جب تیتس نے اپنی فوجوں کو آپس میں متحد کر لیا اور وہ شہر پر قبضہ کرنے کے لیے آ گئے۔ بس سب سے پہلے خدا کے کلام کے خلاف خدا کے نام نہاد لوگ متحد ہو گئے، اس سے پہلے کہ قوم خود کو خدا کے لوگوں کے خلاف متحد کرتی۔ غور کریں، یہ اتحاد ہے، یہ متحد ہونا ہے، آپس میں متحد ہونا۔ مجھے یقین ہے کہ ہم ایک بڑے اتحاد کے وقت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں ان سرخ بتیوں کو اور چمکتے ستاروں کو اور ہر ایک چیز کو غور سے دیکھ رہا ہوں، عورتوں کو کہ وہ کیسے عمل کرتی ہیں، اور آدمیوں کو کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں، اور کلیسیاں کو کہ وہ کیسے عمل کر رہی ہیں۔ میں اپنے پورے دل سے اس چھوٹے گروہ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس عظیم نبوتی گھڑی میں متحد اور تیار ہو رہے ہیں۔ اب آپ غور کریں، اس سے پہلے کہ تیتس قوموں کو بلکہ اپنی فوجوں کو اکٹھا کرتا، اسرائیل نے آپس میں خود کو متحد کر لیا اور خود کو بند کر لیا، اور انہوں نے ایمان نہ رکھا کہ یسوع ہی مسیحا ہے۔ انہوں نے اسے رد کر دیا اور اسے باہر نکال دیا اور اسے مصلوب کر دیا، اور پھر انہوں نے اسے رد کر کے باہر نکال دیا اور اسے مصلوب کر دیا، اور پھر تب انہوں نے اس نجات کو جو ان کے لیے بھیجی گئی تھی رد کر دیا और ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने आप को मुत्तहिद कर लिया। अब इस बात को जहन में बिठा लें, ये खुद को मुत्तहिद कर रहे हैं ताकि वक्त के पैगाम को रद्द करें। उन्होंने ऐसा किया और फिर जब उन्होंने ऐसा किया तो फिर कौमी निशान सामने आ गया और कौमों ने खुद को आपस में मुत्तहिद करना शुरू कर दिया। और तीतस ने उस अजीम फौज को जो रोमियों और यूनानियों पर मुश्तमिल थी बुलाया और यरूशलम के गिर्द मुहासरा कर लिया। अब उस वक़्त जो लोग वहाँ मौजूद थे लिखते हैं कि वो लोग फाके कर कर के मर गए। उन्होंने दरख्तों की छाल को खाया। जोसफस अजीम तारीखदान हमें बताता है कि उन्होंने जमीन से घास काट कर खाई, यहाँ तक कि उन्होंने एक दूसरे के बच्चों को उबाला और उन्हें खाया। गौर करें, क्योंकि वो लोग पागल हो गए थे। और आखिरकार फिर जब तीतस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर यरूशलम के गिर्द बैठ गया तो जो लोग अंदर थे वो सोचते थे कि वो खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। और फिर उन्होंने देखा कि फौजें आगे बढ़ रही हैं। ये इसलिए हुआ कि उन्होंने अपने अजीम मालिक खुदावंद यीशु की बात को जो उसने उन्हें बताई थी सुनने से इनकार कर दिया था। वहाँ उन मसीहों में से कोई एक भी नहीं पकड़ा गया था, इसलिए कि उन्होंने निशान को देखा था और वो भाग गए थे, समझे। उसने कहा जो कोठे पर हो वो नीचे ना उतरे, या जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने पीछे ना लौटे, बल्कि यहूदिया को भाग जाए। बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि जाड़ों के वक्त वहाँ पहाड़ों पर बर्फ होती थी और सब्बत के दिन दरवाजे बल्कि फाटक बंद होते थे, इसलिए वो ऐसी हालत में कैद हो चुके थे, समझे। और हम इसे मजीद देखते हैं, अगर खुदावन की मर्जी हुई तो देखें खुदा कैसे इन कामों को करता है। अब ध्यान दें, वो उन्होंने दुआ की कि ऐसा हो, लेकिन इस तरह से ना सोचा होगा, जबकि यीशु ने उन्हें इसके लिए दुआ करने को कहा था और उनमें से कोई भी वहाँ ना फंसा था, क्योंकि वो भाग गए थे, इसलिए कि उन्होंने निशान को देख लिया था और वो सब भाग गए थे और वहाँ ऐसा ही हुआ था। हो, अब आज जिस वक्त में हम रह रहे हैं, इस वक्त में कलीसियाओं को वक्त के निशान को कैसे देखना चाहिए। जितनी भी जल्दी हो सके आप कलवरी पर जिंदगी के लिए दौड़ जाएं, ना कि किसी कलीसिया में बल्कि यीशु मसीह के पास। खुद को उसके साथ मुतहिद कर लें, ना कि किसी तंजीम या कलीसिया के अकीदे के साथ, बल्कि मसीह के साथ मुतहिद हो जाएं और पूर यकीन हो जाएं कि ये वही है। आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आप मुस्बित ना हो जाएं कि ये वही है। ये मुतहिद होने का वक्त है, मुतहिद होने का यही वक्त है। अब हम इस बात को पाते हैं कि उन्होंने मसीहा को रद्द कर दिया और फिर आपस में इतहाद कर लिया और खुद को एक बड़ी जमात की शक्ल में बना लिया। और उन्होंने एक अपने दरमियान एक तहरीक चला दी कि अगर कोई भी शख्स यीशु को एक नबी की हैसियत से कबूल करेगा तो वो उसे उस कलीसिया से फारिग कर देंगे। आपको वो अंधा शख्स याद है जो बेनाई से महरूम बैठा हुआ था और शागिर्दों ने पूछा किसने गुनाह किया, उसने, उसके बाप ने या उसकी माँ ने? और यीशु ने जवाब दिया, इस मामले में उनमें से किसी ने गुनाह ना किया, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। और आपको याद है जब उन्होंने पूछा तो उसके माँ बाप ने कुछ ना कहा, उन्होंने बस ये कहा हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है, लेकिन हम नहीं जानते कि उसने कैसे शिफा पाई है, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि अगर किसी भी शख्स ने उसके नबी होने का इकरार किया तो वो उसे इबादत खाने से खारिज कर देंगे। लेकिन आप गौर करें, खुदा का काम उस शख्स में हुआ जो उस गिरोह से ताल्लुक नहीं रखता था। उस शख्स ने उनसे कहा, अब मेरे नजदीक ये तजुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो आदमी कहाँ से है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली हैं। समझें, अब देखें, उसने ऐसा कहा था। गौर करें, ये खुदा का काम था, उसे तंदुरुस्ती और शिफा मिली थी और उसने इस बात का ऐलान किया क्योंकि उसे कोई भी रस्सी बांध ना सकी थी जो उसे रोक सकती, क्योंकि उस शख्स की जिंदगी में काम हुआ था और उसने यकीनन अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा देखा था। अब यहूदी यीशु और उसके मसीहाना मनसब और उसके मसीहाना पैगाम के खिलाफ एका कर चुके थे और हम देखते हैं कि अब भी वही काम और वही बात वाकया हो रही है। इश्तराकियत कलीसिया को तबाह करने के लिए मुत्तहिद हो रही है और ऐसा फक्त इसी तरह हो सकता है। और इसके अलावा कलीसिया भी खुद को काउंसिल ऑफ चर्चेज बल्कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज में मुत्तहिद कर रही है ताकि इनकार करे और कलाम के पैगाम को रद्द करे। वो कलाम को पहले ही रद्द कर चुके हैं, कलीसियाएं ऐसा कर चुकी हैं, लोग कलाम को कबूल नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये उनकी तंजीमों के अकीदों के खिलाफ है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कितने ही आग के सुतून हमारे दरमियान जाहिर हो रहे हैं या लोगों के दरमियान जाहिर हो रहे हैं, और कितने ही लोग हैं और कितनी ही बातें हैं जो पहले से बताई जा रही हैं, और वो तमाम अजीम निशानात जिनका उसने इन आखिरी दिनों में होने का वादा किया है जाहिर हो रहे हैं, लेकिन वो फिर भी इनका यकीन नहीं करते। इसलिए वो खुद को अब मुतहिद कर रहे हैं और आपका पासवान यहाँ मौजूद है और बतेरे आपको ये बता सकते हैं जो ये जानते हैं, इसलिए कि उन्होंने दुनिया की आलमगीर कलीसियाई तहरीक में शमूलियत कर ली है, और अगर वहाँ एक लूथरन खादम मौजूद है और अगर वहाँ कोई वबा आती है तो यहाँ इस पड़ोस में भी उसका असर होगा, और अगर हम उस आलमगीर तहरीक के साथ मुतहिद नहीं होंगे तो फिर हमारा चर्च मजीद चर्च ना होगा और आप इसे एक स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे, या अगर हम में से कोई भाई किसी को चोट खाते या मरते देखता है और खादम कोशिश करता है कि उसे कोई रूहानी बरकत दे तो हम इसके बदले गोली से भी उड़ाए जा सकते हैं, और ये बिल्कुल सच है। हमें खिदमत की वजह से हुकूमत की जानिब से 10 साल की कैद भी हो सकती है, इसलिए कि हम आलमगीर तहरीक के रुकन नहीं है। क्या अब भी आप हैवान की छाप नहीं देख पा रहे? समझे? समझे? अब हम इस मुतहिद होने के वक्त को आते देख रहे हैं, समझे? अब गौर करें। और जैसे ही कलीसियाएं खुद को पैगाम के खिलाफ मुतहिद कर लेती हैं, और फिर जब वो ऐसा कर लेती हैं, तो फिर कौमें खुद को कम्युनिज्म में मुतहिद कर लेंगी ताकि कलीसिया को दोबारा तबाह कर दे। बिल्कुल वही काम जो इससे पहले हो चुका है, समझे? वक्त दोबारा अपने आप को दोहराता है। इसराइल ने पहले पैगाम से मुंह फेर लिया था, और जब उन्होंने पैगाम से मुंह फेर लिया तो फिर फौज और कौमी कुव्वतों ने आपस में खुद को मुतहिद कर लिया दूसरी कौमों ने, और वो वहाँ आए और कलीसिया को तबाह कर दिया। और आज भी लोग खुदावंद यीशु के पैगाम से मुंह फेर चुके हैं और लोगों ने इसे रद्द कर दिया है, और अब वो वक्त आ रहा है जब कम्युनिज्म दुनिया को आपस में मुतहिद कर लेगा और वो कलीसिया के खिलाफ उठ खड़े होंगे। लेकिन गौर करें, इसे इसी तरह होना है। अब ऐसी बात कहना बड़ा मुश्किल है। अब ये बात उन यहूदियों के लिए मुश्किल थी, किसका यकीन कर पाते। उन्होंने कहा, भाइयों अब आओ, क्योंकि हम जानते हैं हमारा खुदा हमारे साथ है, और हम हैकल में दाखिल हो जाएंगे और फिर हम दुआ करेंगे और मुकद्दस बाप फलां फलां और मुकद्दस बाप फलां फलां दुआ में रहनुमाई करेंगे, बस दरवाजे बंद कर दो। और तीतस ने उसी वक्त अपना महाज संभाला और वहाँ एक साल या फिर इससे भी ज्यादा अरसा मुहासरा किए रखा। देखें, उसने ठीक मुहासरा बंदी की और उन लोगों को बिल्कुल मरने तक फाका कशी करवाई, यहाँ तक कि उनमें से एक भी शहर से बाहर ना जा सका और वो फाकों ही से मर गए। और जब वो वहाँ अंदर गया तो उन दीवारों को गिरा दिया और वहाँ उसने हर एक चीज को जबा कर दिया और खून बाहर नदियों की मानित बह निकला। अब पीछे पुराने ऐदनामे में खुदावंद के फरिश्ते ने इस बात की नबुवत की थी और बताया था कि ऐसा होगा, और वो तमाम खादम जो के रहनुमा थे जिन्हें ये लाजिम था कि वो जिम्मेदारी उठाते और लोगों को ठीक ठीक बताते, मगर उसकी बजाय जब यीशु उनके दरमियान खड़ा हुआ था तो उन्होंने उसे भी ना पहचाना और कोशिश की कि उसे एक किस्म का खरगोश के पैरों वाला बना दें। हमें कुछ करतब दिखा, हमें दिखा ये कैसे कैसे हुआ है, बस हमें एक निशान दिखा, समझे? और उसने कहा, मैं, हालांकि उसने बहुत सारे काम किए थे मगर तो भी वो उसे ना पहचान पाए, समझे? और फिर जब उन्होंने उसे रद्द कर दिया जो कि उनके लिए उस वक्त का पैगाम था, तो उन्होंने उस वक्त के पैगाम को ना कबूल किया और वो उस वक्त के निशान को देखने में नाकाम हो गए, और बाइबल की पेशनगोई का निशान उनके सामने जाहिर हुआ था, और फिर भी उन्होंने कहा, अब आओ हैकल में चलते हैं। हालांकि वो मुकद्दस आदमी थे, वो ऐसे आदमी थे जिनकी जिंदगियों पर आप उंगली भी नहीं उठा सकते थे, वो ऐसे वैसे आदमी नहीं थे, और फिर हो सकता है वो एक काहिन हो। एक काहिन को किसी मामूली काम के सबब से भी संसार करके मौत के हवाले कर दिया जाता था और उसे हलाक कर दिया जाता था, बस उसे तो एक पाक और मुकद्दस जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसे किसी मामूली काम की वजह से भी संसार किया जा सकता था, और इसलिए वो लोगों की नज़र में मुकद्दस और बड़े ही अजीम आदमी थे। और तब वो अंदर चले गए और कहा, अब हम ऐसा करेंगे और खुदा हमारे साथ है, वो खुदा जो तमाम जमानों में हमारे साथ रहा है, हम उसकी मुकद्दस हैकल में जाएंगे क्योंकि वो खुदा की मुकद्दस हैकल है। लेकिन आप देखें कि उसे अपनी ही मुकद्दस हैकल में बेहुर्मत किया गया था, समझे? हम खुदावंद के घर में जाएंगे। अब आप तमाम अबरानी लोग जानते हैं कि हम चुनी हुई नस्ल हैं इसीलिए तो हम यहाँ मौजूद हैं, और खुदा हमारा खुदा है जो कि इब्राहिम और इसहाक और यकूब का खुदा है, वो हमारे साथ है। वो हमें इन नामख्तून फलस्तियों से, क्योंकि ऐसा हुआ था, यानी इन रोमियों और यूनानियों से रहाई बख्शेगा। वो हमें इन सब से मखलसी बख्शेगा। इसलिए आओ खुदावंद के घर चलें। ऐसी आवाज़ अच्छी लगती है, लेकिन देखें वो क्या कर बैठे थे, जबकि हैकल का बनाने वाला वहाँ एक गरीब गलीली बड़ाई की सूरत में मौजूद था और उन्होंने उसे रद्द कर दिया था, जिसे खुदा ने उस वक्त का और उस नस्ल का पैगंबर साबित किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे रद्द कर दिया था। बस उनकी तमाम दुआओं और सारी दयानतदारी और उनकी तमाम कुर्बानियों की खुदा के नज़दीक कोई अहमियत न रही। उन्होंने ये सब कुछ किया, लेकिन तो भी खुदा ने उस बड़ी फौज को मुतहिद होने दिया ताकि उन्हें तबाह और बर्बाद कर दे। और आज हम देखते हैं कि कलीसियाओं ने और तंजीमों ने रसूमात के जरिए खुदा के कलाम को रद्द कर दिया है। वो नहीं चाहते कि आप उनको इन कामों के मुतालिक बताएं, जबकि साइंस इसे तस्वीरों और इसके अलावा हर एक चीज में साबित कर चुकी है, और फिर भी लोग इसके साथ कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहते। बस कम्युनिज्म इनको बर्बाद करने के लिए उभर रहा है, बिल्कुल जिस तरह तीतस ने किया, और बाइबल कहती है वो ऐसा करेंगे यकीनन। अब आप गौर करें कि हम किस जमाने में रह रहे हैं, मुतहिद होने के वक्त में। जब हम इन चीजों को मुतहिद होते देखते हैं, ओ तो फिर हम उन बातों को देखने में क्यों नाकाम हैं? आप यहाँ कलामे मुकद्दस में देखें और गौर करें कि कहाँ उसने ये वादा किया था कि वो ये करेगा। अब हम देखते हैं कि ये वाकई होने वाला है। हम कलीसिया में देख रहे हैं जो उसने करने का वादा किया था। हम देख रहे हैं कि वो वाकया होने वाला है। अब हम देख रहे हैं कि कौमें आपस में मुतहद हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि निजाम आपस में मुतहद हो रहे हैं, इसलिए कि ये मुतहद होने का वक्त है। ये मुतहद होने की घड़ी है, और यही इस जमाने की रूह है जिससे हमने इत्तेहाद कर लिया है, और हर एक चीज जिसके मुतल्लिक आप गुफ्तगू करते हैं उसे मुनज्जम होना है, हत्ता कि हुकूमत इसे कबूल नहीं करेगी। जैसे कि एक शहरी होते हुए आप ये जानते हैं, मैं एक शहरी होते हुए नहीं कर सकता बहैसियत एक अमरीकी शहरी, जब तक कि मैं, और अगर आप मुझे एक $5 का चेक देंगे तो मैं उस पर अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं कर पाऊंगा। समझे? गौर करें, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। गौर करें, ये मुतहद होने का वक्त है, और ये सब कुछ फिर किसी इत्तेहाद के वसीले ही होगा, और ये इत्तेहाद वो चीज है जो हैवान की छाप को लाएगा। समझे? यही मुतहद होने का वक्त है, और ठीक अपनी सिमत में काम कर रहा है। अगर आप वक्त इस बात पर निगाह डालें तो आप इसे अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, इसलिए कि ये मुतहद होने का वक्त है जहां हर एक चीज आपस में मुतहद हो रही है। अब देखें, यहूदियों ने खुद को यस्सू के खिलाफ मुतहद कर लिया था, जो कि उनका मसीहा था, और हमने देखा है कि क्या हुआ था। और जैसे ही कलीसिया वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस में मुतहद हो जाएगी तो वो कोशिश करेंगे कि पैगाम को, यानी खुदा के कलाम को खत्म कर दें। और अब हम बिल्कुल वही चीज देख रहे हैं कि इश्तराकियत एक हो रही है कि कलीसिया को तबाह और बर्बाद कर दे। अब कलीसिया इससे खलासी पाने की कोशिश में है। सिर्फ एक ही काम है जो ये कर सकते हैं कि खुद को एक काउंसिल में शामिल कर लें, वरना ये अलग-अलग रह जाते हैं। और यहाँ छोटे छोटे ग्रुप मौजूद हैं, यानी मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट और लूथरन और प्रेस्बिटेरियन, चर्च ऑफ क्राइस्ट और इसी तरह और दूसरे हैं, और ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं और एक दूसरे के खिलाफ हैं, और इनके अकीदों में बहुत फर्क है जितना के मशरिक और मगरिब में फर्क है। देखें, वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन एक मर्तबा ये आपस में एक बड़े सरबराह के मुताबिक इकट्ठे हो जाएंगे, और इन्होंने उसे पा लिया है जैसा उन्होंने तब किया था। यही सबब है कैथोलिक में बड़ा इतिहाद है, बिला शुबा रोमन कैथोलिक लोगों में एक इतिहाद है, इसलिए कि रोमन कैथोलिक अक्सरियत में है, जबकि ग्रीक और दूसरे कैथोलिक इतने ज्यादा नहीं है जितने के रोमन कैथोलिक है। अब ये आपस में मुतहिद हो रहे हैं, और यही वजह है कि ये सब के सब इकट्ठे खड़े हो जाएंगे। कोई मसला नहीं कि क्या होता है, लेकिन पोप ही इन सब का सरबराह होगा। समझे? और कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके अलावा और कोई क्या कहता है, पोप मोतबिर है, वो खुदा का कायम मकाम है, यही सब कुछ है। वो कहता है वो खुदा के बाद है, और उसका दोजख पर और आसमान पर, और वो मकाम जहाँ रूहें पाक होती हैं इख्तियार है। समझे? बस ऐसी कोई एक बात भी नहीं है जो इस मामले में अंजाम दी जा सके, लेकिन जो कुछ भी वो कहता है वो कुछ करना लाजिम है। अब प्रोटेस्टेंट भी बिल्कुल उसी तरह अपने लिए एक वैसा ही सरबरा बना रहे हैं। और क्या बाइबल ऐसा नहीं कहती है कि वहाँ हैवान की एक सूरत बनाई गई? एक सूरत क्या है? ये बिल्कुल इसी की मानित है और इसी की तरह बनाई जा रही है। बिल्कुल वही चीज यहाँ मौजूद है। ये क्या है? खुद को आपस में मुतहिद करना, और यही इस जमाने की रूह है, यानी मुतहिद होना। अब वो आपस में मुतहिद हो रहे हैं और पैगाम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस पैगाम को कैसे खत्म करेंगे? वो कैसे खुदा के कलाम को खत्म कर सकते हैं? वो इसे बेअसर बना सकते हैं, बेतासीर कर सकते हैं। वो अकीदों को इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने इब्तदा में किया था, और वो अब भी खुदा के कलाम को बेतासीर कर रहे हैं। गौर करें, वो कहते हैं ओ ये वाकई। इसके बाद अब देखें कहाँ ये जनाकार औरत ऐसा करने की कोशिश कर रही है। उस मैं भूल गया हूँ कि उसका नाम क्या है, अगर मैं उसे याद कर पाया तो बताऊंगा। वो मैं काफी सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी रोज उस खातून मिल्लत के बारे में सोच रहा था, और मेरी ख्वाहिश है कि कोई और खातून भी बिल्कुल उसी की तरह खड़ी हो जाए। वो तन्हाई थी जिसने शराब खानों में जाकर विस्की को बाहर फेंक कर तहस नहस कर दिया, और अलामत और इसी तरह की तमाम चीजों को बाहर फेंक दिया। आज क्यों इस तरह की कोई खातून नहीं उठती जो यहाँ बाहर जाए और उन बरहना तस्वीरों को जो उसकी हम उम्र औरतों की हैं, और इसी तरह की दूसरी चीजों को टुकड़े टुकड़े कर दे, ताकि उनके पास मजीद ऐसी चीजें ना रहें। लेकिन अब ये खातून एक बेदीन है जिसने ऐसा कहा है कि पब्लिक स्कूलों में बाइबल का पढ़ाया जाना गैर आइनी है, और इसी तरह की दूसरी बातें भी कही हैं। क्या आपने दोबारा गौर किया है कि अब ये लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कलामे मुकद्दस के बड़े बड़े मुतालिया करने वाले हैं? उन्होंने ऐसा कहा है बहुत सारी नबूवतें जिनकी बाइबल में पेशनगोइयां की गई थी मुकम्मल तौर पर गलत हैं, और ना ही कभी वकू पजीर हुई हैं। आपने इस बात को सुना और पढ़ा होगा, और वो हर एक ऐसी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप गौर करें कि वो इस कलाम के असर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये इसे खत्म कर सकते हैं तो वो इसे फक्त किसी अकीदे या किसी इंसानी रस्म से ही खत्म कर सकते हैं, जो कि उनकी आंखों को कलाम से कहीं बढ़कर बेहतर लगता है। फिर ये लोग इसे अपनी रस्म और रवाज के जरिए तहस नहस कर देते हैं, और इसी तरह ये लोग खुदा के कलाम को तंजीमी सियासत के जरिए बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हर एक कलीसिया की अपनी ही सियासत है। चर्च ऑफ क्राइस्ट की अपनी है, क्रिश्चियन चर्च की अपनी है, और बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट और प्रेस्बिटेरियन, इन सब की अपनी अपनी सियासत है। अब ये इस बात से किनारा कशी कर रहे हैं क्योंकि ये अलहदा हो चुके हैं। गौर करें, इससे पहले ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन अब इन्होंने ऐसा कर लिया है। गौर करें, इसलिए कि ये मुतहिद होने का वक्त है, और अब वो सबको एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं और मुश्तरका मुफाद बंदी कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि क्या नतीजा निकलता है। मेरे खुदाया, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घोड़े का गोश्त लेकर एक रोटी बनाना, और टोकरी में से कूड़ा क्रिकेट लेना, और जो कुछ इनके पास था उसे इकट्ठा कर रहे हैं, और फिर इस गट्ठे को आपस में मिला रहे हैं, और फिर कुछ गले सड़े आलुओं को और दूसरी चीजों को आपस में मिला रहे हैं, और फिर आप गौर करें इसमें से क्या बनकर बाहर निकलेगा। मुझे यकीन है आप इसका जरा सा भी हिस्सा नहीं लेना चाहते। नहीं जनाब, लेकिन वो इसी तरीके से कर रहे हैं। गौर करें, वो ऐसे लोग ले रहे हैं जो ईमान रखे कि यीशु एक अफसाना था, एक ऐसी कलीसिया जो ईमान रखे कि यीशु सिर्फ एक फर्जी दास्तान था, जबकि दूसरे यानी कुछ ईमान रखते हैं कि वो फक्त एक नबी था। एक शख्स कहता है मौजज़ात के दिन गुजर चुके हैं, जबकि दूसरे कहते हैं शायद ही ऐसी कोई चीज हो, और ये सब मुतफिक हैं। और बाइबल कहती है अगर दो शख्स बाहम मुतफिक ना हो तो क्या इकट्ठे चल सकते हैं? समझे, अब इसी किस्म का इत्तेहाद इन लोगों ने हासिल कर लिया है, और इसके ऊपर कुछ बड़े मुकद्दस सरप्रस्त हैं। और यही आप हैवान की एक सूरत को देख सकते हैं, क्योंकि बाइबल ने बिल्कुल ऐसा ही कहा है। अब इन्होंने एक लुतरन खादम को भी साथ मिला लिया है जो कि इनका सरबरा है। खैर, हम देखते हैं कि ये मुतहिद होने का वक्त है। अब भी बिल्कुल वही बात है, दुनिया में कम्युनिज्म और बाकी तमाम बाहम मुतहिद हो रहे हैं, और इसी तरह कलीसियाओं में भी सब लोग बाहम मुतहिद हो रहे हैं। फितरत पर गौर करें, ओ मेरे खुदाया, फितरत, अगर आप फितरत पर जरा गौर करें तो ये भी बिल्कुल इस काम को जाहिर करती है। फितरत खुदा के निशानात का कैलेंडर है, क्या आप इससे वाकिफ हैं? यीशु ने उन लोगों से कहा था कि फितरत पर गौर करो, जब समुंदर गर्ज रहा होता है तो देखें वहाँ कोई काम हो रहा होता है, और मुख्तलिफ जगहों पर जलजले आ रहे होते हैं, या कौमी सतह पर जंगो जदल छिड़ी होती हैं। जब आसमान पर निशान या जमीन पर निशान जाहिर हो रहे हों, तो वो जगह जहाँ निशान जाहिर होते हैं ये आने वाले वक्त को जाहिर कर रहे होते हैं। बादलों पर गौर करें, इससे पहले के बादल एक तूफानी बारिश लाएं, आप जानते हैं ये कैसे होता है? बहुत सारे छोटे छोटे बादल आपस में मिल जाते हैं और एक बड़ा बादल बन जाता है। ठीक है, जैसे ही बादल के इस छोटे ग्रोह को हवा उड़ाना शुरू कर देती है, और फिर एक दूसरे छोटे ग्रोह को हवा उड़ाना शुरू करती है, और फिर ये सब इकट्ठे उड़ते हैं, और फिर ये एक तूफानी आंधी बन जाते हैं। समझे, इससे पहले कि वो समुद्री तूफान लाएं, उन्हें मुत्तहिद होना पड़ता है, उन्हें ऐसा करना पड़ता है। बतकों और हंसों पर गौर करें, वो अपने मुल्क को छोड़ने से पहले खुद को मुत्तहिद करते हैं, समझे? वो वहाँ मुत्तहिद होते हैं। आप इनको इस तालाब से उस तालाब पर और यहाँ से वहाँ, इन तमाम को एक साथ इकट्ठा होकर उड़ते देख सकते हैं। वो मुत्तहिद होकर अपनी उड़ान के लिए तैयारी करते हैं। गौर करें, बस ये बात है और यही फितरत है, और खुदा ने फितरत को बनाया, और फितरत खुदा के मंसूबे के तहत काम करती है, और ये कानून है, यानी खुदा का एक गैर तहरीर शुदा कानून, क्योंकि फितरत उसके कानून के मुताबिक काम करती है। बिल्कुल जिस तरह तकफीन के मौका पर बयान किया जाता है, और वो जान जो कब्र में चली जाती है, जिस तरह दरख्त की जिंदगी जड़ों की तह में चली जाती है और उस वक्त तक वहाँ पड़ी रहती है जब तक मौसम बहार नहीं आता, फिर उसमें जिंदगी बहाल हो जाती है। ये खुदा का एक कानून है। बस हिकमत उस जिंदगी को नीचे जाने से रोक नहीं सकती, और ना ही आप उसे बाहर निकाल सकते हैं, और ना ही आप उसे किसी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह खुदा करता है उससे बढ़कर उसे करने का कोई बेहतर तरीका नहीं है, क्योंकि खुदा की राहें कामिल हैं। बस जब पत्ता मुरझा जाता है तो फिर उस जिंदगी को नीचे कब्र में भेजता है और उसे पोशीदा रखता है, जैसे कि अय्यूब ने कहा, जब तक तेरा कहर टल ना जाए मुझे कब्र में पोशीदा रख। देखें, इससे पहले कि वो मुंजमिंद हो जाए उसे वहाँ नीचे जाना है, क्योंकि ये फितरत का एक कानून है। अब पत्तों पर निगाह करें तो ये जड़ना शुरू हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि ये फितरत का एक कानून है। बतके आपस में इकट्ठी हो जाती हैं और उनमें से हर एक अपने रहनुमा के चुगिर्द मुंडलाती है। इस मामले में वो किसी भी तरह जान जाती हैं। मुझे नहीं मालूम है वो ऐसा किस तरह करती हैं, लेकिन वो इस बात को जानती हैं कि फलां फलां नर बतख एक रहनुमा है, और उस छोटे साथी के गिर्द वो सब इकट्ठी हो जाती हैं, और फिर ठीक उसी के चौगिर्द मुंडलाती हैं, और फिर ठीक हवा में उड़ जाती हैं, और फिर वो उस तालाब पर कभी नहीं ठहरती, बल्कि वो बिल्कुल सीधा लुजियाना या टेक्सास को, जहाँ भी वो जा सकती हैं, यानी चावल के खेत में चली जाती हैं। गौर करें, इससे पहले कि वो अपनी उड़ान लें, वो अपने घर को जहाँ उन्होंने उसी साल जन्म पाया था छोड़ देती हैं। वो वहाँ मुत्तहिद हो जाती हैं। आमीन, यहाँ हैं आप, यानी अपने रहनुमा के गिर्द इकट्ठा होना। अब इंसान के साथ ये मसला है कि वो अपने रहनुमा को नहीं जानता। जी हाँ जनाब, इसलिए ये इंसान एक तंजीम के गिर्द जमा हो जाते हैं, ये किसी बिशप या किसी और आदमी के गिर्द जमा हो जाते हैं, लेकिन ये रहनुमा यानी कलाम में मौजूद रूल कुछ के गिर्द जमा नहीं होते। देखें, वो कहते हैं, ओ ठीक है, मगर मैं खौफजदा हूँ कि मैं कहीं थोड़ा मजहबी जनूनी ना बन जाऊँ, मुझे डर है कि कहीं मैं गलत राह पर ही ना चला जाऊँ। जी हाँ बिल्कुल, ये आपकी हकीकत है। क्या होता अगर वो बतख कहती, मुझे उसके पर पसंद नहीं है, मैं पुर यकीन नहीं हूँ कि उसकी पैरवी करूं, तो आप उसी वक्त मुंजमंत होकर मर जाएंगे। अगर आप उनके साथ उड़ान नहीं लेते जैसे कि वो उड़ते हैं, तो आप वहां पर ही फंसे रह जाएंगे। यही बात है कि खुद को बाहम मुत्तहिद करना है, और फितरत ऐसा करती है। हंस खुद को बाहम मुत्तहिद कर लेते हैं और खुद ही अपने रहनमा के चुगिर्द जमा हो जाते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह करते हैं। क्या आपने कभी शहद की मक्खियों के झुंड पर गौर किया है? इससे पहले कि मक्खियाँ झुंड में चलें, वो ठीक अपनी मलका के चौगिर्द खुद को बाहम मुत्तहिद कर लेती हैं। ये सच है, और फिर जहाँ वो जाती है वो भी उसकी तरफ जाती हैं। जी हाँ, वो क्या करती हैं? वो झुंड में चलने से पहले मुत्तहिद होती हैं। यकीनन सारी फितरत ऐसा ही करती है। मछलियाँ खुद को मौसम बहार खत्म होने से पहले मुत्तहिद कर लेती हैं। आप दूर समुन्द्र में उन्हें देख सकते हैं, उन बड़ी, हम उन्हें बद्दी बेसुरी सालमन कहते हैं। इससे पहले कि वो मौसम खत्म हो वो ऊपर आ जाती हैं, और आप उन्हें हजार हा हजार की तादाद में देख सकते हैं। वो समुन्द्र के नमकीन पानी के अंदर इधर उधर से आ जाती हैं, लेकिन दरअसल वो ताज़ा पानी की मछलियाँ होती हैं, और वो उस ताज़ा पानी में उबर कर आती हैं, और अंडे देने के मौसम में ऊपर चली आती हैं, और हर चार साल के बाद वो वहाँ ऊपर आ जाती हैं, और जैसे ही अंडे देती हैं तो वहाँ मर जाती हैं, और वो जानती हैं कि जैसे ही वो वहाँ जाएंगी तो मर जाएंगी, और आप कुछ भी करके उन्हें इस काम से रोक नहीं सकते हैं। वो मछलियों के जीना पर से छलांग लगा लेंगी, और इसके अलावा वो वहाँ जाएंगी ये जानते हुए भी कि वो वहाँ मरने जा रही हैं। लेकिन कानून फितरत उन्हें मजबूर करता है, और ये जानते हुए वो वहाँ ऊपर जाती हैं और सुराखों में अंडे देती हैं, और फिर मर जाती हैं, और फिर नई पैदाइश पाने वाली आती हैं, और फिर कोई चीज उन्हें बाहम मुत्तहिद करती है, और फिर वो सब समुन्द्र में चली जाती हैं। ये मुत्तहिद होना है, और ये एक कानून है। आप खुदा के कानून को जरा भी मात नहीं दे सकते। कौमें बिखर रही हैं, क्योंकि अब हम इस वक्त को देख रहे हैं कि लोगों में ऐसा होना जरूर है, क्योंकि हम कौमों के धर्म बरम होने वाले मरले में मौजूद हैं। हम देखते हैं कि कौमों का बाहमी मलाप साल ब साल टूट रहा है और हम इस बात को देखते हैं कि ये कौम कम्युनिज्म में जम होती जा रही है और कम्युनिज्म ने इस कौम को निगल लिया है। और ठीक यहाँ हमारी अपनी कौम ये भी शहद के छत्ते की तरह कम्युनिज्म के साथ जुड़ती जा रही है और वो गलबा पा लेंगे। गौर करें, वो ऐसा कर लेंगे और कोई तरीका नहीं कि इसे रोका जाए। क्यों? बिल्कुल वही सबब है जैसे आप तीतस को नहीं रोक सके थे, इसलिए कि लोग खुदा और उसके कलाम को रद्द कर चुके थे। जी हाँ जनाब, बस लोग अब भी ऐसा ही करने जा रहे हैं और हम इसे ठीक उसी मरले में देखते हैं। मैं अक्सर औकात 2 घंटे ले लेता हूँ, ठीक अब भी मैं तकरीबन 30 मिनट ले चुका हूँ, समझे? लेकिन तो भी मैंने सब कुछ कह दिया है, अब मैं जरा आगे बढ़ रहा हूँ। जब आप घर जाएं तो इसका मुतालिया जरूर करें। ध्यान दें, लोग अब ठीक मुतहद हो रहे हैं। आप कहते हैं भाई ब्रहनम, क्या ये सच है वो हर मजदूर की जंग के लिए आ रहे हैं? बिल्कुल यही है वो जो करेंगे, समझे? और वो उसके लिए अब से मुतहद हो रहे हैं, इसीलिए तो हमारे पास अक्वामे मुतहदा और दूसरी तमाम चीजें हैं। मगरबी दुनिया मशरकी दुनिया के खिलाफ मुतहद हो रही है, कम्युनिज्म और दूसरी चीजें, ये तमाम आपस में मुतहद हो रही हैं। कलीसियाएं बाहम मुतहद हो रही हैं। ऐसे लगता है जैसे हर एक चीज मुतहद हो रही है। हम ये देखते हैं कि वो इत्तेहाद कर रहे हैं, अपने आप को बाहम मुतहद कर रहे हैं। बस अब जिस दौरान ये तमाम कौमें मुतहद हो रही हैं, तो हम दुनिया में ये निशानात भी देख रहे हैं, कौमी निशान, और मुख्तलिफ मकामात पर जलजले आ रहे हैं और मुख्तलिफ चीजें मुतहद हो रही हैं, और दुनिया को इकट्ठा किया जा रहा है और लोगों को मुतहद किया जा रहा है और तमाम कलीसियाओं को और मुख्तलिफ चीजों को इकट्ठा किया जा रहा है। और इस दौरान जबकि ये मुतहद होने का सारा काम हो रहा है, तो एक दूसरा इत्तेहाद भी जारी है। आमीन। यही वो बात है जिस पर अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। खुदा अपनी दुल्हन को मुतहद कर रहा है, वो इकट्ठी होकर मशरिक और मगरिब से, जनूब और शमाल से आ रही है और मुतहद होने का ये वक्त है और ये ठीक अब ही है। वो किसके लिए मुतहद हो रही है? उठाए जाने के लिए। आमीन। खुदा उसे तैयार कर रहा है। जी हाँ जनाब, मुतहद हो। दुल्हन किसके साथ मुतहद हो रही है? कलाम के साथ, इसलिए कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरा कलाम हरगिज न टलेगा। दुल्हन बगैर किसी की परवाह किए, कोई तंजीम या कोई शख्स क्या कहता है, खुदावंद यूं फरमाता है के साथ मुतहद हो रही है। दुल्हन खुद को मुतहद कर रही है, वो तैयार हो रही है। क्यों? क्योंकि वो दुल्हन है। ये बात बिल्कुल ठीक है और वो खुद को दुल्हा के साथ मुतहद कर रही है। गौर करें, और दुल्हा कलाम है। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। और कलीसिया और दुल्हन और कलाम इतना ज्यादा यकजा हो रहे हैं कि जब तक कलाम जो खुद काम कर रहा है दुल्हा के कामों को जाहिर ना कर दे। आमीन। क्या आप इसे समझे? यानी एक इत्तेहाद। अब मजीद कुछ नहीं है, कलीसिया में शामिल हो जाएं। इसमें मजीद कुछ नहीं है बल्कि हर एक चीज से भागें, किनारा करें और मसीह यसु को थाम लें, समझे? ये मुतहद होने का वक्त है। खुदा अपनी दुल्हन को बाहम मुतहद कर रहा है और उसे वापिस ला रहा है। बिल्कुल ठीक है, वो अपने कलाम के वादों को यकजा कर रहा है। शायद दूसरे तसालीकियों 2 बाप में, बल्कि शायद 5वां बाप कहता है, इस तरह लिखा है, वो मुकद्दसीन जो जमीन में सोते हैं वो जमीन से जाग उठेंगे और फिर हम उनके साथ मुतहद हो जाएंगे, यानी हम जो जिंदा होंगे उनके साथ जो मरे हुए थे, इससे पहले कि हम ऊपर जाएं बाहम मुतहद हो जाएंगे। इसलिए कि दुल्हन जब वहाँ जाएगी तो वो मुकम्मल हो जाएगी। अब वो जो जिंदा हैं, जो खुद को कलाम के साथ मुतहद कर रहे हैं, वो जो पहले सो चुके हैं वो उनके साथ मुतहद हो जाएंगे, और इससे पहले कि ये वहाँ ऊपर जाएं, ये तमाम एक मुतहद जमात की मानिंद इकट्ठे हो जाएंगे। आमीन। इश्तराकियत को उठना ही है और इन दूसरी चीजों को भी उठना ही है, और कलीसिया को भी अपने आप को दूसरी तरफ मुतहद करना है जब वो और कौमें वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज के लिए बाहर निकल खड़ी हुई हैं, और दुल्हन ने खुद को खुदा के कलाम के मुतहद मुतहद कर लिया है। और ऐसा करने के लिए खुदा ने आसमानी निशान और दूसरी चीजों को भेजा है ताकि कलीसिया में साबित करे जैसा उसने कौमों में साबित किया था। आमीन। खुदाया, ये मुतहद होने का वक्त है। जी हाँ जनाब, ओ मेरे खुदाया, अब याद रखें, यहाँ फक्त कलाम के साथ मुतहद होना है। दोबारा वापिस मुतहद हो जाएं, वापिस आएं उस ईमान पर जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था, उस पर वापिस आएं। और फक्त ये वही वक्त है, और जिस वक्त में ये होना है वो ठीक यही वक्त है, और इसके अलावा ऐसा वक्त कभी नहीं आया कि लोग तंजीमी रंग रलियों से बाहर निकले हों। लेकिन अब ये मजीद तंजीमी रंग रलियों से वास्ता न रखेंगे, क्योंकि ये हर नस्ल के और हर रंग के और हर अकीदे के मर्दों और औरतों को, बल्कि हर चीज को मसीह में रूल कुछ के बपतिस्मे के वसीले मुतहिद करने का वक्त है और वापस कलाम की तरफ लाने का वक्त है। ये कलीसिया के लिए मुतहिद होने का वक्त है। ओ मेरे खुदाया, पूरे कलाम को इकट्ठा करने का वक्त है जो इन तंजीमों के जरिए मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया गया था, तब से जब नासिये रोम में उन्होंने पहली कलीसिया को मुनज्जम किया था, और फिर उन्होंने लूथर को मुनज्जम किया, फिर उन्होंने वैसली को मुनज्जम किया, और फिर उन्होंने बाकी तमाम कलीसियाओं को मुनज्जम किया, और ये करते हुए उन्होंने अकीदों को अपना लिया, और फिर जब खुदा ने कोई चीज भेजी तो वो उसे कबूल ना कर पाए, और अब तक ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन खुदा ने आखिरी दिनों के लिए वादा किया है कि वो वालिदों का ईमान वापस दुल्हन में दोबारा बहाल करेगा, और ये इसी तरीके से होगा, और ऐसा किसी और जमाने में नहीं हो सकता था, बल्कि इसी जमाने में होगा। और अब उस निशान को देखें जो आसमान से आग के सतून की सूरत में हम पर जाहिर हुआ, और खुदावंद यीशु मसीह के हैरत अंगेज काम और निशानात को देखें, और जब वो हमसे बोलता है तो फिर वो कभी भी मुकम्मल तौर पर उस निशान को पूरा करने में नाकाम नहीं हुआ है। आमीन। तो फिर हमें गौर करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। ये मुतहिद होने का वक्त है। हम देखते हैं कौमें मुतहिद हो रही हैं, हम देखते हैं दुनिया मुतहिद हो रही है, हम देखते हैं कम्युनिज्म मुतहिद हो रहे हैं, हम देखते हैं कलीसियाएं मुतहिद हो रही हैं, और हम देखते हैं खुदा खुद को अपनी दुल्हन के साथ मुतहिद कर रहा है ताकि वो और उसकी कलीसिया यकजा हो जाएं। हालेलुया। बिल्कुल मखरूत की तरह, ठीक है, खुद को बाहम मुतहद कर रहे हैं, खुदा मुतहद हो रहा है। क्यों? इसलिए कि इब्तदाई कलीसिया के जमाने से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जब आग का सतून उन लोगों के दरमियान मौजूद होता था। इब्तदाई कलीसिया के जमाने से पहले ऐसी चीजें कभी नहीं देखी गई थीं जो चीजें आज हम देख रहे हैं, और ये सिर्फ इस तरह मुमकिन हुआ जब खुदा ने सात मोरों को भेजा और उसके जरिए हमें एक निशान दिया, और आसमान से सात फरिश्तों को नीचे भेजा, और उतर आया कि उस कलाम को जो तंजीमों में बिखरा था उसे दोबारा खुदा के कलाम में एक साथ यकजा करे, ताकि अपने रूल कुछ का नजूल करे। यीशु ने कहा, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। दुल्हन वापस कलाम के साथ मुतहद हो रही है जो कि खुदा है। कलीसिया और कलाम, ना कि कलीसिया और अकीदे, बल्कि कलीसिया और कलाम, यानी दुल्हन और कलाम बाहम मुतहद हो रहे हैं। ओ मेरे खुदाया, क्या हुआ? क्या वापस बहाल हुआ? असल पेंटिकोस्टल वालिदों का ईमान, गौर करें, जो कि लूथर ग्रोह के जरिए मुंतशिर किया गया था। लूथर के जरिए नहीं, ना लूथर, ना वैसली, ना ही उन असलाकारों के जरिए, बल्कि उनके जाने के बाद वहाँ एक कलीसिया उठ खड़ी हुई, और उन्होंने तब उन्होंने उसके साथ क्या किया? तब उन्होंने उसमें से एक तंजीम बना ली, और उन्होंने अकीदों और मजीद दूसरी चीजों को कबूल कर लिया, और कलाम से दूर चले गए, और आज उन पर निगाह डालें, अब वो उस वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज में आ चुके हैं। अब आप देखें और इन आखिरी दिनों पर गौर करें। हम इन चीजों को वाकया होते हुए देख रहे हैं जो इससे पहले कभी वाकया नहीं हुई थी। देखें, ये खुदा का निशान है, और ये सब कुछ मुतहद होने का वक्त और निशान है। अब हम इस पर एहतियात से गौर करना चाहते हैं, और बिलाशुबा हकीकी तौर पर पुरयकीन होना चाहते हैं कि ये क्या हमें इसकी समझ आ गई है। छोड़ना, और उन्होंने हकीकी कलाम को तंजीमों की खातिर छोड़ दिया, ताकि बजाय कलाम के वो अकीदों और मुख्तलिफ इंसानों के नजरियात को कबूल करें। मुकाशवा 10 में लिखा है, सातवें फरिश्ते का पैगाम। अब याद रखें, ये बात ठीक सात नरसिंगों के दरमियान है, और वहाँ सात फरिश्ते सात नरसिंगे फूंक रहे हैं। यही वो बात है जिस पर अब हम आएंगे। लेकिन याद रखें, वहाँ बड़े ही मोहतात अंदाज में कहा गया है फरिश्ते के, ना के सातवें फरिश्ते के नरसिंगे, बल्कि सातवें फरिश्ते के पैगाम में। गौर करें, ना के नरसिंगा फूंकने वाला फरिश्ता, बल्कि पैगाम देने वाला फरिश्ता। ध्यान दें, वो फरिश्ता जिसने सिर्फ नरसिंगा फूंका, वो सातवां फरिश्ता नरसिंगा फूंकने वाला फरिश्ता है। लेकिन ये ऐत कहती है, बल्कि सातवें फरिश्ते के पैगाम देने के जमाने में। गौर करें, जब उसका पैगाम पूरा होगा। देखें, ये कलीसियाई जमाने का पैगाम है, और इस वक्त में फिर वो पैगाम देगा, ना के नरसिंगा फूकेगा, और खुदा का पोशीदा मतलब जो के कलाम में लिखा है पूरा होगा। अब गौर करें कि हम कितने अजीम वक्त में जिंदगी गुजार रहे हैं। उन मोरों पर निगाह डालें, कैसे खुदा के उस बिखरे हुए कलाम को यकजा किया गया है, जबकि लूथर और वो बाकी सब बड़े बड़े असलाकार जो गुजर गए थे, लेकिन ये ठीक वापिस आया और उसे बाइबल में जाहिर किया कि वो कहाँ होंगे। हर एक आदमी को उसी ठीक जगह पर रखा। उसने क्या किया और कलीसिया के साथ क्या हुआ और वो क्या करेगा और कलीसिया के साथ क्या होगा, उसने इन सारी बातों को जो छूट गई थी, और फिर इन आखिरी दिनों के बारे में, हम इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और हमें पेशनगोई के जरिए इन बातों के बारे में बताया गया जो वो कुपजीर हो रही हैं, और यहाँ तक कि अखबारात और दूसरी चीजों ने भी इन्हें छापा, और ये ठीक जाहिर होती हैं और ये साबित होती हैं और पोशीदा बेदों को आपस में यकजा करती हैं। आमीन बाई, ये मेरे लिए पुरजलाल है और ये मेरे लिए कलाम को बातरतीब बनाता है। मुझे परवाह नहीं जो भी हो, या मुझे फिक्र है कि लोग क्या कहते हैं और सोचते हैं, और ये ठीक है, लेकिन मेरे लिए ये सच्चाई है और मैं इस पर ईमान रखता हूँ। बिल्कुल उन मजूसियों की तरह जो बाबल से आए और उन्होंने शोर मचा दिया, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, वो अब भी ठीक जमीन पर मौजूद है और हमें उसे जरूर तलाश करना चाहिए, और ये दुरुस्त है। मैं ईमान रखता हूँ उसकी आमद बहुत ही करीब है, और मैं कह सकता हूँ कि देखो दुल्हा आ रहा है, मैंने आधी रात की धूम सुनी। आमीन, हम ठीक आखिरी वक्त में मौजूद हैं, ओ मेरे खुदाया, जिस घड़ी में हम रह रहे हैं। गौर करें, समझें, क्या अजीम जमाना है, क्या अजीम वक्त है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें ये खुदा का अजीम पोशीदा मतलब पूरा हो रहा है और अलूयत में लाकर जाहिर किया जा रहा है कि वो क्या है। और देखें कैसे ये छोटे छोटे नजरियात उन्हें दूर ले गए, और किसी ने खुदा को ये बना दिया और किसी ने खुदा को वो बना दिया, और किसी ने और किसी ने कुछ बना दिया, लेकिन खुदावंत का फरिश्ता नीचे आया और उनके तमाम नजरियात को ले लिया और उनमें से उस सच्चाई को बाहर निकाला और उसे पेश किया, और ये यहाँ मौजूद है, इतना ही कामिल जितना कि ये हो सकता है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है जहाँ आप जा सकें, ये यहाँ मौजूद है, ये वो कुछ है जो वो है। गौर करें, जैसे सांप की नस्ल और वो तमाम मुख्तलिफ बातें जो लोगों के दरमियान बहुत ही पोशीदा रही हैं, समझे, ये क्या है, जैसा कि वो, ये किस बात का निशान है, मुत्तहिद होने का। मलाकी 4 में उसने क्या कहा, बहाल करेगा, असल पेंतीकोस्टल ईमान पर वापस बहाल करेगा, लोगों को बिल्कुल उसी पेंतीकोस्टल पैगाम पर वापस लाएगा, बिल्कुल वही पेंतीकोस्टल निशान, बिल्कुल वही पेंतीकोस्टल सबूत, बिल्कुल वही खुदा, बिल्कुल वही कुवत, बिल्कुल वही तालीम, सब कुछ ठीक वैसा ही होगा, बिल्कुल उसी आग के सतून के सबूत के साथ जो दमिश्क की राह पर जाते हुए पालूस पर जाहिर हुआ था। आज हमारे दरमियान वो बिल्कुल वही काम कर रहा है जो उसने उस जमाने में किए थे, वो हमें मुतहद कर रहा है। हम देखते हैं कि कौमें मुतहद हो रही हैं, हम देखते हैं कि दुनिया मुतहद हो रही है, हम देखते हैं कि कलीसियाएं मुतहद हो रही हैं, हम देखते हैं कि दुल्हन मुतहद हो रही है, दुल्हन कलाम के साथ मुतहद हो रही है। क्यों? इसलिए कि खुदा कलाम है, और जैसा कि कलाम, बल्कि जैसा कि दुल्हा कलाम है और दुल्हन कलाम को सुनने वाली है, वो बहम इकट्ठे हो जाएंगे, वो एक शादी के बंधन की तरह कलाम के साथ मुतहद हो जाएंगे। गौर करें, वो एक शादी के लिए तैयार हो रहे हैं और फिर वो यकजा हो जाएंगे। जब आप ऐसे बन जाते हैं तो फिर कलाम आप में जम हो जाता है। यीशु ने कहा, उस रोज तुम जानोगे, जो कुछ बाप का है वो मेरा है, और जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, और जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा है। उस रोज तुम जानोगे कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है, मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में हो। समझें, देखें, उस रोज, कौन से रोज, यानी इस रोज हम इस बात को देख रहे हैं कि खुदा के बड़े बड़े पोशीदा भेद जाहिर हो रहे हैं। ओ, मैं कितना ज्यादा इस बात को पसंद करता हूँ। ओ, गौर करें, कभी भी साइंस और कलाम का इस तरह मुवाजना नहीं किया गया था जिस तरह के वो आज कर रहे हैं। इससे पहले वो ऐसा कभी नहीं कर पाए थे, ऐसा हाल ही में उन्होंने किया है। ध्यान दें, उसने कहा आसमान पर निशान, यानी आसमानी निशान, साइंस और कौमी निशान। अब आज उनके पास आसमान पर एक बड़ा निशान है और उनके पास खलाबाज और हर एक चीज मौजूद है, लेकिन ये दुनियावी खलाबाज साइंस से क्या करते हैं? ये लोगों में खौफ पैदा कर रहे हैं। वो नहीं जानते कि किसी भी वक्त ये ऐसी खतरनाक चीजों को ऊपर भेज सकते हैं और फिर ये बम गिरा सकते हैं और फिर हम यहाँ मजीद ना होंगे। देखें, ये आसमान में खौफनाक मनाजिर है। अब ये भी एक निशान है जो इन्होंने हासिल कर रखा है, समझे। इन्होंने ऐसी बहुत सी चीजें, यानी एटमी मिसाइल और बाकी सब कुछ हासिल कर रखा है। ये निशानों की तमाम इकसाम हैं। आपने देखा कि गुजरे रोज उन्होंने इस मुआदे पर दस्तखत किए थे कि वो कहीं भी मजीद किसी भी किस्म का बम धमाका नहीं करेंगे, लेकिन अब वो पानी के अंदर जा रहे हैं और जेरे जमीन इनके तजर्बे कर रहे हैं। देखें, उन्होंने एक मुआयदा कर लिया है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और अगर आप कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही आप घर वापस जाते हैं और फिर उसी तरीके को अपना लेते हैं और हम इस बात से वाकिफ हैं कि आप बिल्कुल इसी तरीके से कर रहे हैं। देखें, इसलिए मुआहदे जैसी कोई बात नहीं है, ये तो इसलिए इन लोगों के दरमियान जरा भी एतमाद नहीं है, इसलिए कि वहाँ कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि आप एतमाद कर सकें, समझे। और हर कोई एक दूसरे से खौफजदा है और ये एक खौफनाक निशान है। साइंस और इंसान और कौमों ने मिलकर आसमानों में एक खौफनाक निशान तख्ली कर दिया है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और अब ये लोग एक दूसरे से खौफजदा हो रहे हैं और एक आसमानी निशान भी दिया गया है। अब गौर करें, उन्होंने आसमान में एक निशान हासिल कर रखा है जो कि एक खौफनाक निशान है और वो इंसान यानी एक खलाबाज की सूरत में मौजूद है। शायद ये एक एटमी मिसाइल भी हो सकता है जो गिर सकता है और पूरी कौम को तबाह कर सकता है। एक खलाबाज ऊपर जाता है और वहाँ ठहरता है, वहाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उन्हें ऐसा करने से बाज रख सके। वहाँ किसी भी वक्त जब भी वो चाहें वो यकीनन ऐसा कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो उसे जमीन पर अब फक्त 15 मिनट में ला सकते हैं और जो कुछ एक करता है उसी तरीके से दूसरा भी कर सकता है। बस आपने गौर किया कि उन्होंने एक निशान को हासिल कर लिया है, लेकिन इस किस्म के निशान ने इन लोगों को खौफजदा कर दिया है। वो बाहम मुत्तहिद हो रहे हैं और अपनी ताकतों को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं। आजाद दुनिया होते हुए वो अपनी ताकतों को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं। कम्युनिज्म अपनी ताकत को रूस के साथ इकट्ठा कर रहा है और हर एक ऐसा कर रहा है, लेकिन तो भी हर कोई एक दूसरे से खौफजदा है। गौर करें, ये एक खौफनाक निशान है और ये दुरुस्त है। ये कौमी निशानात और बाकी चीजें हैं, मगर कलीसिया भी एक आसमानी निशान को हासिल कर चुकी है और हमारा भी एक खलाबाज है, आमीन, और वो यीशु मसीह है जो आग के सतून की सूरत में मौजूद है। ये वही है जो पुराने ऐदनामे में मौजूद था, ये वही है जो दमिश्क की राह पर जाते हुए सऊल से मिला था, बिल्कुल वही यीशु आज भी यहाँ मौजूद है। तो फिर ये क्या करता है? क्या ये खौफ दिलाता है? बल्कि ये एक दूसरे के लिए मोहब्बत और इत्तेहाद को लाता है, आमीन, एक दूसरे के लिए एहसास को लाता है, वो खुदा की मोहब्बत को लाता है, ओ, ताकि हमें मुतहद करे और हमें यीशु के बदन में एक दुल्हन की तरह हम हाँ कर दे। यही वो काम है जो अब वो कर रहा है। ये उस खुदा का अजीम मिलाप है, वो खुद को मुतहद कर रहे हैं। एक ग्रोह दूसरे ग्रोह से लड़ाई करता है और दूसरा ग्रोह वहाँ किसी और एक ग्रोह से लड़ाई करता है और कलीसिया उनके दरमियान खड़ी होती है। आप गौर करें, फिर क्या होगा? कलीसिया भी उनके साथ मुतहद हो जाएगी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अब हम देखते हैं कि इस तरह खौफ और परेशानी पैदा होती है। लेकिन कलीसिया और दुल्हन एक ही खुदा के साथ मुतहद हो और एक ही रूह यानी खुदा के रूह के मुतहद हो, जो खुदा के मुकद्दस इत्तेहाद में एक हो जाए, ताकि खुदा की एक मुकद्दस दुल्हन हो, ये ठीक है, ताकि सब इकट्ठे हों और एक बदन मुतहद हो और बदन दुल्हन बनने का मुंतजिर हो, ताकि ये दुल्हन बन जाए, क्योंकि हम अपने आप को दुल्हन कहते हैं, इसलिए कलीसिया इकट्ठी होकर आ रही है, क्योंकि ये दुल्हन के मुतहद होने का वक्त है। इसलिए तो उसने हमारे दरमियान मोहब्बत की फिजा कायम कर दी है, ताकि हम मुश्किल से भी एक दूसरे से दूर ना हो सकें। ये दुरुस्त है। हमें बस आपको इन लोगों से इल्तिजा नहीं करनी पड़ती कि दुआ करें, आपको इन लोगों से इल्तिजा नहीं करनी पड़ती कि खुदा की इबादत करें, आपको इनसे इल्तिजा नहीं करनी पड़ती कि ये दुरुस्त काम करें, बल्कि ये इस कदर उसकी मोहब्बत में उसके साथ कायम हो चुके हैं कि इनके लिए उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप एक लड़की के बारे में तसव्वुर करें जो कि वाकई एक खूबसूरत कुंवारी हो और वो एक खूबसूरत जवान मर्द से शादी करने जा रही हो और वो उसकी मोहब्बत में दीवानी हो गई हो। इसका मतलब है वो उसे अपनी जिंदगी से कहीं बढ़कर चाहती है और लड़की ठीक इस बात को जानती है कि अब वो शादी करने जा रही है। और जैसे ही शादी का दिन आता है तो मैं आपको बताता हूँ, फिर वो लड़की इर्द गिर्द घूमती है, समझे, वो हर एक चीज को बिल्कुल ठीक तैयार करती है, यहाँ तक के मुकम्मल तौर पर खुद को उसके ताबे कर देती है। और ये सच है, और हर एक चीज जो उस शख्स को खुश करती है बस फिर वो वही करती है, ठीक है। और आज कलीसिया की मोहब्बत भी इतनी ज्यादा गहरी होनी चाहिए और हमारी जिंदगी खुदा में मसीह के जरिए रुल्क उसकी मोर लगने के वसीला पोशीदा होनी चाहिए। और इसी बात की मैं आपको यहाँ तालीम दे रहा हूँ और आपको इन निशानों और मुख्तलिफ चीजों के वाकई होने के मुतालिक बता रहा हूँ। अब मेरे पास वक्त नहीं है कि इसे जारी रखूँ, लेकिन खुदावंद की मर्जी से किसी दूसरे पैगाम में देखेंगे। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात है जिसकी अब तक कलीसिया में कमी है और हम चाहते हैं कि उसे लें, और अब मैं बिल्कुल उसके किनारे पर हूँ, समझे, हम उसे लेना चाहते हैं, मगर आपको उसे हासिल करना ही है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यही बात है, आपको जरूर उसे हासिल करना चाहिए, क्योंकि देखें, मुतहिद होने का वक्त करीब है। क्योंकि खुदा कलीसिया को उठाए जाने के लिए इकट्ठा कर रहा है ताकि शादी के लिए उस अजीम इत्तेहाद में एक हो जाएं। तब खुदा और इंसान अब्दियत के लिए मुतहद हो जाएंगे, तब वक्त की मखलूक अब्दियत के साथ मुतहद हो जाएगी। ऐसा एक मर्तबा जमीन पर इब्ने आदम की सूरत में हुआ और उसे एक कुव्वत को लाने के लिए अपनी जिंदगी को देना पड़ा ताकि उन दूसरे इंसानों को बिल्कुल इसी वक्त के साथ मुतहद कर दे जो कि यीशु मसीह की दुल्हन के लिए है। और अब कलीसिया खुद को मसीह के बदन में मुतहद कर रही है और उसने खुद को आजाद कर लिया है और हर छोटी छोटी रुकावट को काट कर दूर करके खुद को तैयार कर रही है और इकट्ठी हो रही है और इनके दरमियान एक इत्तेहाद हो रहा है। ओ और मोहब्बत और शादमानी और रुलकुस इनके दरमियान जुम्बश कर रहा है। ओ मेरे खुदाया, कैसा अजीम वक्त है। जैसे हम देखते हैं बतखें तैयार होती हैं, जैसे हम देखते हैं हंस तैयार होते हैं, हम देखते हैं हैवान बल्कि शहद की मक्खियों को तैयार होते हुए देखते हैं, हम देखते हैं कि बादल बारिश के लिए तैयार होते हैं, जैसा कि हम हर एक चीज को देखते हैं, कैसे ये चीजें खुद को बाहम मुतहद करती हैं। और ये अजीम मौका है। हम कौमों के इत्तेहाद को देख रहे हैं कि कौमें इकट्ठी होकर खुद को कम्युनिज्म में मुतहद कर रही हैं। हम उन्हें देखते हैं कि वो खुद को यहाँ मगरबी दुनिया में मुतहद कर रही हैं। हम उन्हें देखते हैं कि कलीसिया खुद को बाहम मुतहद कर रही है और इसी तरह तमाम दूसरे भी कर रहे हैं। बस ये सब कुछ किसी और वक्त में होता ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये 20 साल पहले नहीं हो सकता था, इस तरीके से कभी नहीं हो सकता था, 10 साल पहले भी इस तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि इसे ठीक अब ही होना था। गौर करें, क्योंकि ये निजाम और ये चीजें पहले कभी इस मकाम पर नहीं आई थीं। अब जाग उठें, ठीक जल्दी से अपने आप को झिझोड़ें और देखें कि इस वक्त हम कहाँ हैं। हम कहाँ हैं? उन मजूसियों की तरह हम ठीक उस कलाम की तरतीब में आएं और खुदावंद का नूर हमारी राह रोशन कर रहा है। आसमान के खुदा को जलाल मिले, आसमान के खुदा को जलाल मिले जिसने हमें यीशु दिया है, जिससे हम मोहब्बत करते हैं और हमें इस मकाम पर लाया है, और हम उसके लोग हैं जो उसके लहू की कीमत से खरीदे गए हैं। ओ मेरे खुदाया, जब मुतहद होने का वक्त ये है तो हम मुंतजिर हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ और उसके रूह के बंधन में मुतहद हो जाएं। हम क्या ये उसी का रूह है? यकीनन ये उसी का रूह है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि ये उसका कलाम है और जब वो कलाम का रूह है और वो वादे का रूह आप पर नाजिल होता है और साबित करता है और खुद को ठीक यहाँ जाहिर करता है, तो क्या ये वही यकसा रूह है? ये वही है जो बियाबान में मूसा के साथ था, ये वही है जो यीशु मसीह पर था, ये वही है जो साउल को दमिश्क की राह पर जाते हुए मिला था, ये वही है जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है और वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। और हम देखते हैं कि कौमें इकट्ठी हो रही हैं, हम देखते हैं कि कलीसियाओं के सरबराह इकट्ठे हो रहे हैं, हम देखते हैं कि कम्युनिज्म इकट्ठा हो रहा है, हम देखते हैं कि निजाम इकट्ठे हो रहे हैं, और हम इन सारी बातों को देख रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि दुल्हन कलाम के साथ मुतहद हो रही है। ओ मेरे खुदाया, यही वो वक्त है जब ईमानदार उठ खड़े होंगे ताकि उनके साथ जो जिंदा हैं मुतहद हो जाएं, ताकि ये जाकर अब्दियत के लिए यीशु मसीह के साथ मुतहद हो जाएं। खुदावंद हम में से हर एक की मदद करे ताकि आज रात यीशु के साथ मुतहद हो जाएं। हम अपनी हर एक चीज को जो हमारी है उसके ताबे कर दें, हर चीज जो हमारे पास है यानी अपनी जान बदन और जहन यीशु मसीह को दें और इस मुतहद होने के वक्त पर निगाह रखें। जब खुदा का नरसिंगा फूंका जाएगा और फिर वक्त मजीद ना रहेगा और अब्दियत की सुप फूट निकलेगी जो साफ और रोशन होगी, जब वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे और वहाँ दूसरे किनारे पर जमा हो जाएंगे दुल्हन के साथ जो जिंदा होंगे और इकट्ठे ऊपर उठा लिए जाएंगे। मुतहद होने पर निगाह रखें। खुदा अपने कलाम के साथ कलीसिया को मुतहद कर रहा है और कलीसिया कलाम के साथ है ताकि वो दोनों एक जैसे हो जाएं। जैसा कहो वैसा ही हो जाएगा, जैसा करो वैसा ही हो जाएगा। यही बात है जैसे कि मैं आपके साथ मौजूद हूँ, मैं इसे साबित कर रहा हूँ और इस वक्त मैं आपके साथ मौजूद हूँ। ठीक है, हम देखते हैं अब वो वक्त है जब नरसिंगा फूंका जाने वाला है और वो मुकद्दसीन जो सोए हुए हैं वो हमारे बगैर कामिल नहीं हो सकते, इसलिए कि वो हम पर इंतजार कर रहे हैं, अब्रानियों 11 बाप। और जब वो इकट्ठे होकर आएंगे तो वो उन जिंदों के साथ मुतहद हो जाएंगे। कलीसिया कलाम के साथ मुतहद हो रही है, कलीसिया और कलाम बाहम मुतहद हो रहे हैं ताकि एक हो जाएं। वो मुकद्दसीन जो मर गए हैं जिंदा मुकद्दसीन के साथ बाहम मुतहद होकर एक हो जाएंगे और फिर तमाम मसीह के साथ वहाँ मुतहिद होकर उस बरा की शादी की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। ये मुतहिद होने का वक्त है और निशान हर जगह जाहिर हो रहे हैं। कौमों में निशान नजर आ रहे हैं, कम्युनिज्म में निशान नजर आ रहे हैं, मगरबी दुनिया में निशान नजर आ रहे हैं और काउंसिल ऑफ चर्चेज में निशान नजर आ रहे हैं। और आज रात यहाँ रुलकुस की हमायत और शफीक रहनुमाई के तहत निशान मौजूद है और खुदा का कलाम इसकी तस्दीक कर रहा है और इसे सच्चा साबित कर रहा है। आमीन। ये मुतहिद होने का वक्त है और मुतहिद होने के वक्त का निशान है। आए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद यीशु, मेरा कमजोर दिल इस शादमानी के लिए धड़क उठा है और मैं मुमकिन नात को देखता हूँ। मैं जो एक दरमियानी उम्र का इंसान हूँ, लेकिन अब तू इन मुमकिन नात के वसीला मुझे दिखा रहा है कि तू इस नस्ल में जाहिर होने वाला है। काश कि मैं जिंदा रहूं और खड़ा रहूं और देखूं जब वो नरसिंगा फूंका जाए कि जो नेजस है वो नेजस ही होता जाए और वो जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। ऐ खुदावंद खुदा, और हम खड़े हुए अपने मुतल्लिक सोच रहे हैं कि एक ही लम्हे में, बल्कि पलक झपकते ही, जब दुनिया ना जान पाएगी कि क्या हो गया है, लेकिन अचानक ही आप लोग देखेंगे कि आपके सामने आपका कोई प्यारा जो जा चुका था जाहिर हो जाएगा और फिर दोबारा आपके साथ मुतहिद हो जाएगा। और हम एक ही लम्हा में, बल्कि पलक झपकते ही तब्दील हो जाएंगे और उठा लिए जाएंगे और मिलकर हवा में खुदावंत का इस्तकबाल करेंगे और फिर उसके साथ मुतहिद हो जाएंगे और वहाँ हमेशा के लिए रहेंगे और फिर दोबारा उसकी हजूरी से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। खुदावंद, आज ये कैसी अजीम बात है ये जानते हुए अब हम एक ही रूह में मुतहिद हो गए हैं। एक ही रूह यानी रूह कुस, जिसने कलाम को अपनी गिरफ्त में ले रखा है और हमारे अंदर आ गया है। और ये कैसी अजीम बात है और ये कैसा शर्फ है कि तमाम दुनिया को छोड़कर हमने अपने आप को यीशु मसीह के साथ मुतहिद कर लिया है और किसी रोज के मुतल्लिक सोच रहे हैं जब एक जिस्मानी सूरत में एक ऐसे बदन के साथ जो उसके अपने जलाली बदन की मानिंद होगा और हम उस शादी की ज़ियाफ़त के मेज पर बैठे होंगे और मुतहिद होंगे और उसके साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे ताकि आने वाले सारे वक्त में यानी दायमी अब्दियत के लिए दुल्हा और दुल्हन की तरह रहें। खुदावंद खुदा, ये बात लोगों के लिए एक मन गढ़त ख्याल ना हो, बल्कि ये बात उनके लिए इस हद तक हकीकत बन जाए जब तक वो भूख और प्यास इन लोगों में ना लग जाए कि ये लोग अपनी अखबारात पढ़ते हैं और उस पर निगाहें लगाए हुए हैं और रेडियो पर खबरें सुनते हैं, समझ सकें कि ये मुतहिद होने का वक्त है और निशान चमक रहे हैं। खुदावंद खुदा, जैसे हमने औरतों के मुतल्लिक गुफ्तगू की कि वो इन आखिरी दिनों में क्या करेंगी, कलीसिया इन आखिरी दिनों में क्या करेगी और कलीसियाई जमाने क्या हैं और मोहरें क्या हैं और तमाम इन दूसरी बातों पर बात की है और हम देखते हैं कि ये वैसा ही है जैसा नूह के दिनों में था। हम देखते हैं ये वैसा है जैसा सदूम और लूत के दिनों में था, जब खुदा के फरिश्ते ने खुद को इंसानी बदन में जाहिर किया, जब एक बछड़े का गोश्त खाया और गाय का दूध पिया और रोटी खाई और वहाँ खड़ा हुआ और बताया कि उसके पीछे क्या हो रहा है और यीशु ने कहा इब्ने आदम के आने पर भी ऐसा ही होगा। खुदावंद खुदा, हम मखलूत को देख चुके हैं और कैसे हमने उसे तामीर किया और गौर किया कि कैसे हमने इन चीजों को उसमें शामिल किया और इस बात को मालूम किया कि हम आखिरी वक्त में हैं और उस कोने के सिरे के पत्थर का इंतजार कर रहे हैं। खुदा को जलाल मिले। ऐ बाप, हम दुआ करते हैं कि तू अब जल्दी ही लोगों को उठा खड़ा कर और हमें एक साथ इकट्ठा कर दे ताकि इलाही मोहब्बत के साथ यीशु मसीह की और एक दूसरे की इज्जत करें। अगर आज रात यहाँ कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसको उम्मीद नहीं है कि वो आपके साथ आराम पाएगा, क्या आप खुदा के सामने अपना हाथ उठाएंगे और कहेंगे खुदावंद खुदा, मुझे अपने साथ मुतहिद कर ले, मुझे अपने साथ यकिया कर ले। भाई, खुदा आपको बरकत दे। खुदा आपको और आपको और आपको बरकत दे। जी हाँ, खुदा मुझे अपने साथ यकसुई बख्श। जी हाँ, ओ मेरे खुदाया, कौमें बिखर रही हैं और इसराइल बेदार हो रहा है। इसराइल पर निगाह डालें, वो मुतहिद हो रहा है। इसराइली पूरी दुनिया से आ रहे हैं ताकि खुद को मुतहिद करें। उन्होंने खुद को मुतहिद कर लिया है और अब वो एक कौम है, वो एक मुतहिद कौम है। उनका अपना झंडा है, अपना रुपया है, अपनी फौज है और सब कुछ अपना है। जैसे कभी वो थे, अब वो बिल्कुल वैसे ही हैं। इसराइल मुतहिद है, रोम मुतहिद है और कलीसिया मुतहिद है और दुल्हन मुतहिद हो रही है। आमीन। और वो अजीम इत्तेहाद आ रहा है। ये क्या है? ये तमाम उस बड़े निशान की जानिब हरकत कर रहे हैं कि यीशु और उसकी दुल्हन एक साथ मुतहिद हो जाए। खुदा बाप इन बरकात को बख्श दे जो मैंने इन लोगों के लिए मांगी हैं, और हम दिलो जान से तुझ में मुतहिद हो जाएं, जैसे कि इन्होंने अपने हाथों को उठा रखा है और इस बात की तमन्ना कर रहे हैं। खुदावंद खुदा हमें पाक कर और हमें अपना ले। खुदावंद ये बख्श दे, और हम सब बस यही जानते हैं और हम यही कर सकते हैं कि मांगे, और फिर जैसा कि तूने कहा है, अगर हम मांगते हैं और उस पर ईमान रखते हैं तो हम उसे हासिल कर लेंगे। खुदावंद मैं इसके लिए मुंतजिर हूँ। यीशु मसीह के नाम में तेरा शुक्र करता हूँ, आमीन। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। क्योंकि पहले उसने मुझसे प्यार किया, और मेरी निजात को कलवरी की सूली पर खरीदा। आमीन। ओ मेरे खुदाया, देखो दुल्हा चला आता है। मैंने आधी रात की धूम सुनी है। अगर हम उसे पकड़ रखेंगे तो हम एक ललकार के साथ उठाए जाएंगे और आसमान पर उसे मिलेंगे। मेरे भाइयों, जागो और दुआ करो। मुबादा तुम्हारा ताज कोई और ना ले ले, क्योंकि नीम गर्म और बरगश्ता शादी का लिबास ना पहनेंगे। ये दुरुस्त है। आए उस आधी रात की धूम के लिए तैयारी करें। ये उसी घड़ी आ जाएगी जब आप सोचते भी ना होंगे। एक धूम मच जाएगी, ना कि बेएतकाद दुनिया के दरमियान, बल्कि ये पोशीदा होगी, लेकिन ईमानदारों में जो इस बात के लिए मुंतजिर हैं। क्या आपने गौर किया? सितारे तरतीब में आ रहे हैं, समझे? इससे क्या जाहिर हो रहा है? बिल्कुल वही कुछ जो उसने पहले वक्त में जाहिर किया था। गौर करें, हम यहाँ हैं और निशानात जाहिर हो रहे हैं। हम देखते हैं उसकी मुबारक आमद के निशानात जाहिर हो रहे हैं। बेशक, गौर करें, अंजीर के पत्ते अब हरे हो रहे हैं और बादशाही की खुशखबरी पूरी दुनिया में जा रही है, और हम इख्तिताम के करीब हैं और इसे देख रहे हैं। फिर कहीं दूर बड़ी खुशी से हम उसकी मुबारक आमद के शाही पैगाम रसा को सुनेंगे। क्या ये बात दुरुस्त है? ओ, हम उसकी मुबारक मौजूदगी के पैगाम रसा हैं, और यही है जो हमें करना है। हर एक को बताएं, तैयार हो जाएं, खुदा से मुलाकात के लिए तैयार हो जाएं। आमीन। मैं उससे प्यार करता हूँ। ओ, मैं कितना उससे प्यार करता हूँ। अब आए, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। अब जैसे ही हम एक दूसरे को खुदा हाफिज कहते हैं तो इर्द गिर्द जाएं और एक दूसरे से हाथ मिलाएं और कहें, जब तक हम दोबारा ना मिलें। अब हाथ मिलाएं, जब तक हम दोबारा ना मिलें। जब तक हम यीशु के कदमों में ना मिलें। जब तक हम दोबारा ना मिलें। याद रखें, हो सकता है आपको बुलावा आ जाए, तो फिर हमारी अगली मुलाकात उसके कदमों में होगी। जब तक के आपसे दोबारा मुलाकात नहीं होती, खुदा आपके साथ हो। अब जरा सोचें, इससे पहले कि हम दोबारा मुलाकात करें, इससे पहले कि हम इतवार की सुबह या बुध की रात को मुलाकात करें, तो शायद हो सकता है कि आपको इस बात की खबर मिले कि शायद कोई गायब हो गया है। कोई गायब हो सकता है और वो चले जाएंगे। हो, जरा सोचें कि आपका शोहर गायब हो गया है, या आपकी बीवी गायब हो गई हो, और शायद जॉन की बीवी गायब हो गई हो, और आपके बच्चे गायब हो गए हों। ये सब कुछ हो गया हो। क्या वाकया हुआ? आप क्यों पीछे बच गए हैं? हो, क्या ही रोना और मातम होगा जब खोए हुए अपनी तबाही के बारे में जान लेंगे, और वो पहाड़ों और चट्टानों से पुकारेंगे इसराइल की तरह। जब वो वापस शहर में हैकल की जानिब जा रहे थे, उन्होंने दुआएं की, लेकिन उनकी दुआओं को बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए कि उन्होंने पैगाम को रद्द कर दिया था। हो भाइयों, अब आप ऐसा कभी मत करना। आप जो कुछ भी करते हो, अब इस मकसद के लिए दलेरी से खड़े हो जाएं। जी हाँ जनाब, अब जब तक हम दोबारा ना मिलें, हम ऐसा ही करेंगे। यीशु का नाम अपने साथ रखें। एक सीपर की तरह हर एक फंदे से बचे रहें, और जब परेशानियां आपको चारों तरफ से घेर लें, तो फिर आप क्या करेंगे? तो सिर्फ उसी कदूस नाम से दुआ मांगें। बेश कीमत नाम, ओ कितना मीठा, आसमान की खुशी और जमीन की उम्मीद। बेश कीमत नाम, ओ कितना मीठा, आसमान की खुशी और जमीन की उम्मीद। आए हम अब अपने सरों को झुकाएं और हम इसे गुनगुनाएं। यीशु के नाम पर सर झुकाएं, उसके कदमों में गिर के सजदा करें। बादशाहों का बादशाह आसमान पर है, उसे ताज पहनाएं। जब हमारा सफर मुकम्मल हो जाए, ये किसी रोज हो ही जाएगा। बेशकीमत नाम, ओ कितना मीठा नाम। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, खुदा आपके साथ हो। आसमान की खुशी और जमीन की उम्मीद। बेशकीमत नाम, ओ कितना मीठा, ओ कितना मीठा। आसमान की खुशी और जमीन की उम्मीद।